तो आज हम लोग देखेंगे कि कल से आगे, कल तक हमने देखा कि भगवान भगवद गीता में प्रकृति, जीव और भगवान के संबंध के विषय में क्या बताए। अभी उस संबंध को जानने के बाद, ये जान लेने के बाद कि हमारा वास्तविक स्थान ये नहीं है, ये भौतिक जगत, ये हमारे लिए एक जेल है, तो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि तो फिर इस जेल से कैसे बाहर आया जाए। तो कल का थोड़ा सा रिवीजन करेंगे। तो आत्मा और भगवान, उनका क्या संबंध है, क्या रिलेशन है दोनों के बीच में। आत्मा भगवान का अंश है। कैसा अंश है कि जैसे एक कागज का टुकड़ा होता है, उसके अलग अलग पीस फाड़ते हैं तो वो उसके अंश होते हैं, या एक मिट्टी है, मिट्टी का एक गीली मिट्टी, और उसमें से थोड़ी थोड़ी आप अलग करते हैं और फिर बाद में दोबारा से मिला सकते हैं। तो इस प्रकार के अंश हैं कि हम भगवान के साथ एक थे और अभी अलग हो गए और फिर बाद में एक हो जाएंगे, ऐसे अंश हैं। हमने कल इसके बारे में कुछ बताया था, सनातन अंश है। सनातन का मतलब पहले से ही है और हमेशा रहेंगे, हमेशा से अंश रहेंगे। अगर हम एक हो जाएंगे तो फिर अंश कैसे रहेंगे। तो अंश हम हैं, लेकिन वैसे नहीं जैसे कि मिट्टी में से एक अलग अलग निकाल के, अगर मिट्टी में से सब मिट्टी के ढेले करके पूरी मिट्टी को अलग कर दिया जाए तो फिर मिट्टी जो पहले थी जिस स्वरूप में, उसका अस्तित्व रहता है फिर नहीं रहता, वो तो पूरी बढ़ जाती है। तो क्या भगवान भी ऐसे ही, हम उनके अंश हैं तो सब अंश निकल जाने से भगवान का भी कोई अस्तित्व नहीं आएगा, भगवान अभी अंशों में विलीन हो गए, ऐसा होता है नहीं। अंश ऐसे अंश नहीं है, सनातन अंश है। अंश मतलब सिमिलर इन क्वालिटीज, पार्ट एंड पार्सल। अंश हैं लेकिन उनसे टुकड़े टूट करके अलग नहीं हुए हैं, हमेशा से अलग रहते हैं, हमेशा से अलग रहते हैं। कभी ऐसा नहीं कि उनके टूट के अलग हुए और फिर बाद में जुड़ जाएंगे, ऐसा नहीं है, सनातन अंश है। तो हमेशा से भगवान है, और क्योंकि हम भगवान की शक्ति हैं तो हमेशा से हम भी रहते हैं। तो इस प्रकार से जैसे सूर्य और सूर्य प्रकाश, कभी ऐसा समय होता है कि सूर्य था लेकिन सूर्य प्रकाश नहीं था, ऐसा पॉसिबल नहीं ना, लेकिन फिर भी सूर्य का प्रकाश अंश है सूर्य का, उसकी शक्ति है सूरज की। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि कभी एक टाइम था जब सूरज था लेकिन सूर्य प्रकाश नहीं था। जब शक्तिमान होता है तो उसकी शक्तियां साथ साथ होती हैं ऑलवेज, ऐसा नहीं कि शक्तिमान है शक्तियां नहीं है। तो वो शक्तिमान कैसे, शक्तिमान का मतलब ही है जिसकी शक्तियां हों, तो शक्ति और शक्तिमान दोनों साथ साथ होते हैं। लेकिन फिर भी शक्ति शक्तिमान पर आश्रित मानी जाती है, शक्ति शक्तिमान पर आश्रित मानी जाती है। तो इस दृष्टि से हम कहते हैं कि सूर्य प्रकाश कहां से आता है, सूर्य से आता है, तो वो इन्फीरियर है, वो उससे आता है। सूरज सूर्य प्रकाश से नहीं आता है, सूर्य प्रकाश सूर्य से आता है, लेकिन दोनों ही साथ साथ रहते हैं हमेशा। ऐसा कभी नहीं हो संभव है कि एक समय में सूरज था सूर्य प्रकाश नहीं था। तो शक्ति और शक्तिमान दोनों सनातन है, तो भगवान भी सनातन है, तो जीव भी सनातन है। इसलिए हमने वैदिक उपनिषद का उदाहरण दिया, नित्य नित्यानाम, भगवान भी नित्य है और जीव भी नित्य है, उनकी सब जो शक्तियां वो सब भी नित्य हैं। जो भौतिक प्रकृति, जो प्रकृति है वो भी नित्य है क्योंकि वो भी उनकी शक्ति है, लेकिन ये प्रकृति अलग अलग रूपों में परिवर्तित होती रहती है। तो लेकिन जो प्रकृति, जो एनर्जी है भौतिक, वो और भगवान की हमेशा रहती है, लेकिन समय समय पर भूत्वा भूत्वा प्रलीयते, बाबा बनती है बाबा बिगड़ती है। जैसे बिल्डिंग, ये बिल्डिंग पहले इस रूप में नहीं थी, रॉ मटेरियल के रूप में थी, अब जब बिल्डिंग ये ध्वस्त हो जाएगी तो फिर दोबारा से रॉ मटेरियल बन जाएगी। तो ऐसे ही जो शक्ति है भौतिक शक्ति वो हमेशा से रहती है, लेकिन भौतिक शक्ति का जो रूप है वो कुछ समय प्रकट होता है, कुछ समय में खत्म हो जाता है। तो उसी तो लेकिन जो जीव का रूप है, क्योंकि वो भौतिक नहीं है, वो बनता बिगड़ता नहीं है। समझ में आ रहा है? दोनों ही शक्तियां हैं, भौतिक शक्ति भी है और आध्यात्मिक शक्ति भी। हमने देखा कि भगवान की कितनी प्रकार की शक्तियां हैं गुणों की दृष्टि से। नहीं, अष्ट तो भौतिक प्रकृति के आठ अंग हैं जिनसे वो बनी है, पर भगवान की गुणों के हिसाब से दो प्रकृतियां हमने डिस्कस की, अपरा और परा, सुपीरियर और इंफीरियर। दोनों में क्या अंतर है? सुपीरियर का इंफीरियर क्यों है, सुपीरियर क्यों है? चेतन और निर्जीव। तो भगवान की दो शक्तियां हैं, एक जड़ है एक चेतन है। जो जड़ है उसको हम इंफीरियर कहते हैं और जो चेतन है उसको हम सुपीरियर कहते हैं। यू मिस्ड यस्टरडे लेक्चर, ओके, सो वी आर रिवाइजिंग, सो सम थिंग्स यू कैन कैच अप। अभी जो सुपीरियर नेचर है, फिर हमने देखा उसमें दो भाग हैं, कौन कौन से? यस, वेरी गुड, इंटरनल एंड मार्जिनल, अंतरंग और तटस्थ। तटस्थ का एग्जाम्पल क्या है, कौन है तटस्थ के अंदर, कौन तटस्थ शक्ति के अंदर कौन से आते हैं, कौन आते हैं? जीव, नॉट ओनली मनुष्य, सभी सभी लिविंग एंटिटी, सभी आत्माएं तटस्थ के अंदर आती हैं। और बहिरंग शक्ति के अंदर कौन से आते हैं, क्या चीज, कौन क्या है जो बहिरंग शक्ति में आता है? बहिरंग शक्ति तीन शक्तियां हैं, बहिरंगा, तटस्थ, अंतरंग। तो बहिरंगा शक्ति किस चीज की बनी है, हैं? निर्जीव, मटेरियल वर्ल्ड, ओके। और सुपीरियर में दो, तटस्थ और अंतरंग। अंतरंग शक्ति कहां संचालित होती है, कहां देखने को मिलती है, कहां उसका कार्य होता है, संचालित वो फंक्शन क्या होता है अंतरंग शक्ति का? आध्यात्मिक जगत में संचालन जो होता है वो अंतरंग शक्ति से होता है, ओके। तो जो श्रीमती राधा रानी है वो पर्सोनिफिकेशन है भगवान की अंतरंग शक्ति का, और जो दुर्गा जी हैं वो पर्सोनिफिकेशन है भगवान की बहिरंग शक्ति का। इसलिए दुर्गा जी का कार्य है इस भौतिक जगत का संचालन, और राधा रानी जो भगवान की शक्ति हैं, अंतरंग शक्ति हैं, उनका कार्य है आध्यात्मिक जगत का संचालन। और जीव तटस्थ है, तटस्थ नाम क्यों दिया गया है जीव को, आप बताएंगे? तटस्थ हमने डिस्कस किया था कि तटस्थ, तटस्थ मीन्स वॉट, तटस्थ, तट, इन बिटवीन, सो व्हाई इट इज कॉल्ड तटस्थ, डू यू रिमेंबर? नो, हु रिमेंबर्स? ओके, वेल इन दैट सेंस, बट स्पेसिफिकली इन द सेंस, तटस्थ मीन्स वो दोनों में से किसी एक के प्रभाव में आ सकती हैं। तटस्थ हैं तो वो बहिरंगा के प्रभाव में भी आ सकते हैं और अंतरंग के प्रभाव में भी आ सकते हैं। तो वर्तमान में जो हमारी सिचुएशन है इस भौतिक जगत में, हम तटस्थ शक्ति जो जीव है, आत्मा है, वो किसके प्रभाव में है, बहिरंगा शक्ति के प्रभाव में है कि अंतरंग शक्ति के प्रभाव में है? बहिरंग। और जो आत्मा आध्यात्मिक जगत में है वो किसके प्रभाव में है? अंतरंग शक्ति। मैटर इज गेटिंग क्लियर? ओके, तो ये हमने डिस्कशन किया भगवान और उसकी शक्तियों के विषय में। तो अभी फिर हमने डिस्कशन किया कि तो जीव जो जो अंतरंग, जो सुपीरियर नेचर का है, वो कैसे बहिरंगा शक्ति के प्रभाव में कैसे आ गया? ओरिजिनली उसका गुण सुपीरियर है, जीव चेतन है, तो वो अंतरंग शक्ति के प्रभाव में होना चाहिए, वो उसकी नेचुरल सिचुएशन है। तो ये अननेचुरल सिचुएशन में वो कैसे आ गया, बहिरंगा शक्ति के प्रभाव में वो कैसे आ गया जीव? आध्यात्मिक जगत से कैसे हम लोग इस भौतिक जगत में कैसे आ गए, कौन बताएंगे इसका उत्तर? यस, हाँ, भगवान की माया। तो भगवान की माया मतलब एक्सटर्नल एनर्जी, तो एक्सटर्नल एनर्जी हमको पकड़ के यहां लेके आई। यस मंजीत, हमने आने की इच्छा की यहां, तो फिर हमको यहां लाया गया। हमने उदाहरण दिया पुलिस स्टेशन, पुलिस कभी हमको नहीं पकड़ती है, हम ऐसा काम करते हैं जिससे कि पुलिस हमको पकड़ती है, लेकिन पुलिस हमें नहीं पकड़ती अपने आप। ऐसे ही भगवान की बहिरंगा शक्ति हमें जबरदस्ती नहीं पकड़ती, लेकिन जब हम भगवान की सत्ता का विद्रोह करते हैं, हम भगवान को भूलते हैं, भूलना चाहते हैं, खुद भगवान बनना चाहते हैं, खुद इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं, अपनी स्वतंत्र इच्छा शक्ति का दुरुपयोग करके, तब तुरंत पुलिस यानी कि भगवान की जो माया शक्ति है वो हमको पकड़ लेती है। क्योंकि जो हम चाहते हैं वो संभव है केवल अंडर इल्यूजन। हम चाहते हैं हम भगवान बनना, इंडिपेंडेंट होना, वो संभव है? वो संभव नहीं है। तो इसलिए वो कब संभव है? जब हम इल्यूजन में आ जाएं। सो यही, इसलिए ये काम है माया शक्ति का। माया मीन्स मा अयम, जो नहीं है ऐसा प्रतीत होना, इसलिए उसको माया शक्ति कहते हैं। तो माया शक्ति के प्रभाव में आती, जैसे जादूगर जादू करता है, ऐसे माया शक्ति क्या है हम पर? इल्यूड्स, इट डिल्यूड्स अस, इट क्रिएट्स इल्यूजन दैट वी स्टार्ट थिंकिंग यस यस आई हैव बिकम इंडिपेंडेंट, आई एम द एंजॉयर, आई एम ग्रेट, देयर इज नो गॉड, आई कैन डू एनीथिंग, आई एम द प्रोप्राइटर, ये जमीन मेरी है। दो लोग लड़ते हैं आपस में, जमीन मेरी है, जमीन मेरी है। किसी की जमीन है दोनों में से? अगर जमीन तुम्हारी है तो हमेशा तुम्हारा अधिकार होना चाहिए उसके ऊपर। जब तुम मर जाओगे तो जमीन तो वहीं की वहीं रहेगी, तुम्हारे आने से पहले भी जमीन वहीं की वहीं है, लेकिन फिर भी हमको ऐसा प्रतीत होता है आई एम द प्रोप्राइटर ऑफ दिस लैंड, आई एम दिस बॉडी, आई एम एंजॉइंग, आई एम ग्रेट, द होल वर्ल्ड इज रिवॉल्विंग अराउंड मी, एवरीथिंग इज मीन फॉर मी। तो इट मेक अस थिंक, मेटेरियल एनर्जी, इल्यूजन एनर्जी मेक अस थिंक एज इफ वी हैव बिकम इंडिपेंडेंट। Still, every moment we are dependent on God. Still, in this world also, isn't it? Every moment we are dependent on God. ये हवा, are we controlling it? हमारी हृदय की धड़कन, we don't even know how its heart is pumping. We don't know how this whole body is working, correct? क्या जानते हैं हम साइंटिस्ट में से? Okay, now we know. But still, the scientist's heart is beating not because of him, scientist's heart is beating because of other agent. Scientist is not making his heart beat, and jab heart ruk jayega to scientist cannot make it again heart again beat. To vaigyanik bhale isko study kar le, but that doesn't mean that he is responsible for it. They may study it, that's a different thing. To vartman mein bhi, is bhautik jagat mein bhi, hum hamesha nirbhar hain bhagwan par, lekin maya se hum sochte hain दिखता है भगवान, दिखता तो नहीं है इसलिए कोई नहीं, वी फील एज इफ वी आर इंडिपेंडेंट। सो दिस इज बिकॉज ऑफ द इल्यूजरी पोटेंसी। तो हम आते हैं यहां पर इस भौतिक जगत में अपनी स्वतंत्र इच्छा शक्ति का दुरुपयोग करके। व्हेन वी डिजायर टू बिकम इंडिपेंडेंट ऑफ गॉड, विच इज ओनली पॉसिबल अंडर इल्यूजन, गॉड्स मेक अरेंजमेंट थ्रू द इल्यूजरी पोटेंसी, सो वी कम अंडर इल्यूजन, अंडर इल्यूजरी पोटेंसी, एंड देन वी लिव, वी कम हेयर, एंड How do we transmigrate then? On what basis? अलग अलग शरीर किस आधार पर मिलते हैं हमको, क्या है उनका बेसिस? Who will tell? मनमीत, what's your name? Ah, your name is Manjeet. Manjeet. Manmeet. And you are? Sunil Gupta. Okay. So Sunil, अलग अलग शरीर, कोई कुत्ता है, कोई बुल्ली है, कोई शेर है, कोई पेड़ है, ये सब अलग अलग वेराइटी के पीछे कारण क्या है? Why so many varieties? What the purpose served by them? यस, ओनली वर्क और वर्क एंड डिजायर, टू थिंग्स, कर्म और इच्छा। फॉर एग्जाम्पल, मनुष्य की इच्छा है लीडर बनने की, हमेशा उसको लीडर बनना पसंद है। कॉलेज में गया तो वहां यूनियन लीडर, फैक्ट्री में गया तो वहां यूनियन लीडर, सब जगह उसको लीडर ही बनना है, ठीक है। लेकिन काम ऐसे करता है ना, सब पाप कर्म करता है कि मनुष्य जीवन तो नहीं मिलने वाला, पशु जीवन मिलेगा। तो अभी उसकी इच्छा है लीडर बनने की, लेकिन कार्य है पशु जैसा, तो ही विल बी गिवन चांस टू बिकम लीडर ऑफ एनिमल सोसाइटी, ही कैन बिकम ए वेरी बिग डॉग। तो डिजायर इज ऑल्सो फुलफिल्ड बट अकॉर्डिंग टू कर्म। लेकिन ये कर्म का सिद्धांत बहुत गहन होता है, इट्स नॉट जस्ट सो सिंपल, जस्ट एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, बट इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स बिकॉज सो मेनी फैक्टर्स आर देयर। और ये हायर अथॉरिटीज करती हैं, डेमीगॉड्स अंडर द सुपरविजन ऑफ गॉड, दे आर कंट्रोलिंग, दे मैनेज किसका क्या लेखा जोखा है, व्हाट आर द एक्शंस दे आर डूइंग, व्हाट आर द डिजायर्स, एंड देन अकॉर्डिंग टू दैट दे आर गिवन ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ बॉडी, दे आर सेंट इन ए पर्टिकुलर वूम्ब ऑफ ए मदर। तो इस प्रकार से हम लोगों को कितनी योनियां हैं, 84 लाख, 84 लाख टाइप्स ऑफ स्पीसीज, वेरी स्पेसिफिक डिस्क्रिप्शन इज देयर, 20 लाख जलजा नवलखानी, 9 लाख जो है वो जल में रहने वाली हैं, ऐसे सबका स्पेसिफिक है। तो इससे 84 लाख योनियां है। तो अभी मनुष्य जीवन में क्या क्या पॉसिबिलिटी है, क्या जानवरों के लिए कर्म होता है, कर्म का सिद्धांत लगता है जानवरों को? आपका नाम क्या है? मेहुल, मेहुल, ओके। क्या जानवरों को भी कर्म का सिद्धांत लगता है, उनको भी कर्म के अनुसार योनि मिलती है? क्यों? यस, क्योंकि उनकी जितनी डेवलप नहीं है कि वो गलत कर सकें या सही कर सकें, वो प्रकृति के नियम के अनुसार ही काम करेंगे, वो उसको तो उसको विरुद्ध नहीं जाएंगे, इसलिए विरुद्ध नहीं जाएंगे तो वहां पाप और पुण्य का प्रश्न नहीं है। जस्ट तो फिर क्या होता है उनका, उनको फिर योनियां कैसे मिलती हैं? अपने आप, अपने आप मींस बाय अरेंजमेंट ऑफ नेचर दे आर ऑटोमेटिकली गिवन हायर एंड हायर योनि बर्थ टिल दे कम टू ह्यूमन बींग्स। अभी मनुष्य आने पर नाउ इट इज वी बिकम रेस्पॉन्सिबल, क्योंकि अभी हमारी चेतना डेवलप्ड है, वी कैन थिंक व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, एंड सो वी बिकम रेस्पॉन्सिबल। अगर ट्रेन का एक्सीडेंट होता है तो हम कई बार देखते हैं रेल मिनिस्टर इस्तीफा देता है, बल्कि गलती होती है किसी लाइनमैन की जिसने नट बोल्ट ढंग से टाइट नहीं किए, लेकिन इस्तीफा कौन देता है? रेल मिनिस्टर देता है। क्यों? बिकॉज ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस थिंग्स। एक छोटा आदमी है उसको ही कैन इग्नोर, उसको इग्नोर किया, अरे वो नहीं लगा है, बट इट वॉज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू सी कि ही इज वर्किंग और नॉट। तो इसलिए जिम्मेदारी किसका, जिसके जो ऊपर है उसकी जिम्मेदारी आती है। तो सिमिलरली ह्यूमन बींग्स वी आर रेस्पॉन्सिबल फॉर आवर एक्शंस, एनिमल्स दे आर नॉट। सो देयरफॉर बिकॉज वी हैव फ्रीडम, हमारी जो इंडिपेंडेंस है मनुष्य योनि में, वी गेट दैट फ्रीडम। ओके, तो इस प्रकार से हम ऊंची योनि में भी जा सकते हैं, डेमीगॉड्स बेटर लाइफ इन दिस मेटल वर्ल्ड, और नीचे भी जा सकते हैं, एनिमल लाइफ में भी जा सकते हैं, और दोबारा मनुष्य योनि में भी जा सकते हैं। तो सबसे अच्छी योनि कौन सी है, देवताओं की योनि, मनुष्य की योनि या जानवरों की योनि? मनुष्य की, देवताओं की? सबसे अच्छा है कि हम इस जेल से ही ऊपर जाएं। तो डेमीगॉड बनने की इच्छा कैसी है, बी क्लास प्रिजन से ए क्लास प्रिजन में आना, लोहे की हथकड़ी छोड़ करके सोने की हथकड़ी पहनना, लेकिन हथकड़ी से मुक्त होना है, गो बैक होम, बैक टू गॉड। लेकिन इसी भौतिक जगत में भी मनुष्य योनि इज बेटर देन डेमीगॉड्स, बिकॉज मनुष्य योनि में संभव है आत्म साक्षात्कार, जो डेमीगॉड लाइफ में भी पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? ना तो जानवर की योनि पॉसिबल है, ना डेमीगॉड में, मतलब पॉसिबल है बट इट्स मोर डिफिकल्ट। हवाए, क्योंकि इतना ऑप्युलेंस है, इतना फैसिलिटी है कि दैट यू डोंट इवन फील लाइक डिस्ट्रेस टू मच टू एंडेवर फॉर सेल्फ रिलेशन। और जानवरों में इतना निम्नता है, इतनी कष्ट है और इतनी कम बुद्धि है, दे बिकॉज ऑफ दैट दे कैन नॉट कम टू सेल्फ रिलेशन। इसलिए जो बीच का है मनुष्य योनि, दैट इज मोर सुटेबल फॉर सेल्फ रिलेशन। लेकिन जहां तक फैसिलिटी की बात है, मेटल फैसिलिटीज, डेमीगॉड्स दे आर हैविंग मच मच मोर फैसिलिटीज फॉर मेटल एंजॉयमेंट देन ह्यूमन बींग्स, बट बिकॉज ऑफ दैट ऑप्युलेंस, मोर एंजॉयमेंट, इट इज लेस लाइकली that they will understand, they will be sincere, serious to for self-realization. Okay. तो अभी ये जान लेने के बाद अभी हम यहां से शुरू करते हैं, तो ठीक है, what is the process of going back home, back to Godhead? तो process means what? हम लोग तो वहीं के निवासी हैं, तो हम वहां से, हमारा पतन हुआ है, तो यदि हम अपनी गलती को सुधार लें, so we will be again reinstated. As simple as that. तो हमारी गलती क्या है कि हमने अपनी स्वतंत्र इच्छा शक्ति का दुरुपयोग किया कि मैं इंडिपेंडेंट भगवान से रहूंगा। तो यदि हम अपनी इस गलत इच्छा को प्यूरिफाई कर दें, सही इच्छा में परिवर्तित कर दें, प्यूरिफाई कर दें इसको। क्या है वो सही इच्छा? दैट आई एम सर्वेंट ऑफ गॉड, आई शुड सर्व हिम, दैट इज माई नेचर, ये मेरा स्वभाव है, दिस इज इन माई बेनिफिट। रिबेलियन, भगवान से विद्रोह करना मेरे हित में नहीं है, लेकिन मेरे हित में है भगवान की सेवा करना, क्योंकि यही मेरी स्वाभाविक स्थिति है। इसीलिए लेट मी सरेंडर टू गॉड, लीव दिस डिजायर टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ गॉड। नो, आई अंडरस्टैंड नाउ, आई एम योर सर्वेंट, देयरफॉर आई सरेंडर टू यू। एक्चुअली मां के गर्भ में जब हम होते हैं, भागवतों में वर्णन है, वो जीव जो थोड़े एडवांस्ड है, मनुष्यों में भी जो एडवांस्ड है इन देयर चेतना, वो मां के गर्भ में भी प्रार्थना करते हैं भगवान से। जब उनको चेतना आती है एट द अराउंड 7 months, दे बिकम कॉन्शियस, फिर बच्चा घूमना शुरू करता है अंदर। सो एट दैट टाइम दे फील सो मच डिस्ट्रेस्ड, एवरीवन फील डिस्ट्रेस्ड, बट दोज हु आर एडवांस्ड इन कॉन्शियसनेस, देन दे आर एबल टू अंडरस्टैंड कि वो क्यों इस स्थिति में है। सो दे प्रे टू गॉड दैट दिस बर्थ विल बी अवर लास्ट बर्थ, वेन वी विल गेट आउट फ्रॉम दिस मदर्स होम वी विल ओनली रेंडर डिवोशनल सर्विस टू यू। दे प्रे लाइक दिस, प्लीज अलाउ अस टू डू लाइक दिस, वी डोंट वॉन्ट टू कम अगेन इन टू दिस होम, दिस विल बी अवर लास्ट बर्थ, वी विल ओनली डू भक्ति। बट अनफॉर्चुनेटली मोस्ट ऑफ देम फॉरगेट, जैसे बाहर आते हैं फिर हम सब लोग फिर से भूल जाते हैं, और फिर जब किसी संत के, साधु के, भक्त के संपर्क में आते हैं, देन अगेन द वे ओपन्स। इट कैन बी अ न्यू पर्सन, ही वाज नॉट एडवांस फ्रॉम प्रीवियस लाइफ, बट इट कैन बी अ न्यू स्टार्टिंग, और इट कैन बी अ ही इज ऑलरेडी कवर्ड, क्योंकि जो भगवान की भक्ति है वो एक जन्म में खत्म नहीं होती है, इट इज कैरीड ऑन लाइफ आफ्टर लाइफ, दैट इज अ स्पेशलिटी ऑफ स्पिरिचुअल एडवांसमेंट। मेटेरियल एडवांसमेंट इज कैरीड फ्रॉम लाइफ आफ्टर लाइफ। If you are PhD in this life, next life, from where you will start your studies? Again from ABCDs. Not that okay, last life mein abhi PhD kiya hai, abhi aage karenge. Not possible. Again, his future life is not like that. This life you do 2%, next life you start with 3%. Therefore, in spiritual life there is no loss, even if you are not able to complete it in this life. Whereas material life, material advancement, if you have not completed it, it is completely useless. आपने घर बनाना शुरू किया और गृह प्रवेश से पहले मर गए तो जितना भी लेबर किया वो सब बेकार गया। और अगर आपने गृह प्रवेश कर भी दिया तो नेक्स्ट लाइफ में फिर दोबारा से फाउंडेशन से शुरू करना पड़ेगा। बट स्पिरिचुअल लाइफ, वॉट एवर यू डू स्टेज विद यू। इसलिए हम देखते हैं कोई व्यक्ति बचपन से ही He is attracted towards spiritual life, और कोई लोग बूढ़ा होने के बाद भी they are seeing TV and enjoying material pleasures and this doesn't strike them. They are suffering so much, still it doesn't strike. But some people from very beginning they are interested in knowing the subject matter. Very beginning they are attracted automatically towards spiritual life, towards following rules, regulation, towards Bhagavad Gita. Naturally they have a attraction towards it. And some people Can you see the difference? People are having these differences. So this is not just by chance. This is not just by chance. Anyway, तो इस तरीके से आध्यात्मिक जीवन वो कैरी होता है। तो क्या है आध्यात्मिक जीवन का एसेंस? आध्यात्मिक जीवन means purifying our consciousness. Purifying our consciousness. तो हमारी वर्तमान में कॉन्शियसनेस है that I am a product of material nature, I am body, and I am enjoyer of this material world, I am proprietor of this material world. This is our consciousness. This is called contaminated consciousness. Dushit buddhi, dushit chetna. Dushit chetna ka kya kya swabhav hai? Ki I am product of this material nature, that is I am this body. Second, this I am the enjoyer of this material world. This world is meant for my enjoyment. क्या ये नहीं हम सोच रहे हैं? Just analyze. Everybody, what is thinking? Whatever you see, immediately you see, how I can enjoy it. isn't it? On this principle, advertising industry is based. So you show them, hey, new car, immediately, how it can be mine. Everything you see how to possess it, how to have it, how to enjoy it. Kyunki hamari basic understanding kya hai? Everything in this world is meant for my enjoyment. And you want to be the supreme enjoyer, the center of the universe. Everyone is struggling to be the top. I should be the topmost. I should be the most. Everything is actually meant for me. Isliye isha hoti hai. If somebody else is enjoying something, we become envious. Why is he enjoying? Actually, this is meant for my enjoyment. So we become envious. And so there are fights between two people, between neighbors, between two castes, between two nations. This is the root reason. Because everybody is thinking center is he. For example, ek talab hai. Talab mein aap patthar fekte hain, to uski waves banti hain. Concentric waves. Aur wo tat ki taraf jati hain. Abhi aap ek patthar yahan dalein aur dusra patthar yahan dalein. To kya hoga unki waves ka? They will crash. To ye ho raha hai. Everybody is having his own, he is assuming himself as a center of the universe. And his area of enjoyment is spreading from him. This is advancement of material life. Let me increase my area of enjoyment. More money means what? You are increasing your area of enjoyment. Correct? Now I can only enjoy bike. Tomorrow I should be able to enjoy car. Like that. So, and everybody is like that, increasing his area. So what is happening? My interest and your interest is crashing. So they have a fight. Ye mera hai. Nahi, ye mera hai. Crashing. This is called crash. Are you following? Lekin spiritual world mein kya hai? Center is God. To agar ek patthar aapne yahan dala aur 50 patthar usi jagah dalenge, so what will happen to the waves? There will be synchronization. They will not crash. Because the center point is same. So millions of millions of waves will go, newer and newer waves, but they will never crash. So, ye hai adhyatmi jagat. Jahan par kendra hai, Bhagwan. Aur baki sab hai, unke sevak. To phir aap sochenge, to ye seva karne mein phir jeev ko kya milega? Bhagwan enjoy karenge bas. What will happen to the soul? लेकिन यही बात समझने की है, soul's enjoyment, happiness, lies in satisfying God. वर्तमान में soul हम क्या सोच रहे हैं? What is the formula for happiness for the people of this material world? My happiness lies in satisfying these senses, material senses. This is the formula of happiness for people of this world. Very simple formula. My happiness lies in satisfying bodily senses, which includes mind and intelligence. Kuch level, kuch log hain jo gross senses ke enjoyment ke level par hain. Yani, khao, sex karo. This is their level. Bodily, gross body senses. Khub dekho, acha, acha khao, acha suno, sangeet suno. And like this. Five senses, material, gross senses, gross sense pleasure. They are at that level. Next, higher level, mental platform. Iske andar aate hain, kavi, music. This is all at the level of mind. Kya hai? Mirch. Kaun sa mirch? Radio kya hai? Radio mirchi. So log pagal hain. Oh, what is this? At the mind, they are enjoying songs. This is at the mind. Kavita likhna. Art, no, art. This is all at the level of mind. They can forget even eating. So gross level bhi bhul jayenge. Because they are enjoying higher level of happiness, which is at the level of mind. Then still higher. Enjoyment at the level of intelligence. Solving mathematical riddles. Scientists solving the big, big problems. This is intelligence level. They are not interested in music. They are not interested in eating. वेरी टेस्टी फूड बट दे आर वेरी मच इंटरेस्टेड डे एंड नाइट दे आर इन देयर लेबोरेटरीज थिंकिंग वर्किंग ऑन सम प्रॉब्लम्स दिस इज इंटेलिजेंस दे आर गेटिंग एंजॉयमेंट फ्रॉम इट दैट्स व्हाई दे आर डूइंग इट करेक्ट एवरीबडी डिराइविंग सम प्लेजर सो इन दिस वे देर आर थ्री लेवल्स ऑफ सेंस एंजॉयमेंट बॉडी बॉडीली आई मीन सेंशुअल मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल थ्री लेवल्स लेकिन ये सभी एक कहलाते हैं बॉडी तो ह्यूमन लाइफ में इन जनरल फॉर दोज हु आर इन इग्नोरेंस इन दिस मेटल वर्ल्ड देयर फॉर्मूला ऑफ हैप्पीनेस इज माई हैप्पीनेस इज इक्वल टू एंजॉयमेंट ऑफ सेंसेस माइंड एंड इंटेलिजेंस डू यू एग्री विद दिस फॉर्मूला किसी का और कोई दूसरा फॉर्मूला है सेम फॉर्मूला बट रियलिटी आत्मा के लिए व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ हैप्पीनेस सेटिस्फेक्शन ऑफ द सोल इज इक्वल टू सेटिस्फेक्शन ऑफ कृष्णास सेंसेस देयर इज ऑल्सो सेंस ग्रेटिफिकेशन बट नॉट योर दिस बॉडीली सेंस ग्रेटिफिकेशन नॉट योर बॉडी सेंस ग्रेटिफिकेशन नॉट कृष्णास सेंस Now you can say there is one more level, not my senses, but my father and mother senses, my brother senses, my wife senses. What about that? But that is extended sense gratification. एक माता पिता अपने लिए गरीबी में रहेंगे खाएंगे भी नहीं लेकिन बच्चा अच्छा खाएगा बच्चा अच्छा पहनेगा he will feel satisfied because he has extended his body to the body of his children because body is the product of their body. It's in relation with their body. So it's just extension of the body, their body. Why not any child? Why only your child? Because it has got relation with this body. Why my wife only? Because it is relation with this body. So this is also same exam, same equation. My enjoyment lies in my sense gratification. It can go to my this body, body of my family members, body of my Patel Samaj or any other Samaj, or body of my Indians, or body of all human beings, but till it remains body, it is all bodily platform. Is it clear? Lekin spiritual, atma ke liye anand ki equation hai, not bodily senses, but senses, spiritual senses of Krishna. Kaise? Because Krishna senses, Krishna, that is the root of everything. तो अगर हमें पेड़ की तनी में पेड़ के पत्तियों में फलों में पानी देना है व्हाट्स एनीथिंग इट्स डिस्ट्रैक्टिंग तो अगर हमें पेड़ की पत्तियों में फ्रूट्स में पानी देना है तो हमें पानी कहां देना होगा जड़ में देना होगा अगर हमें हाथ पैर आंख कान को पोषण देना है तो हमें खाना कहां देना होगा पेट को देना होगा हाँ, तो उसी प्रकार से ऐसा नहीं सोच सकते कि हाथ सोचे कि काम तो मैं करता हूं पैर सोचे काम मैं करता हूं पेट केवल खाता है तो पेट को खाना देना बंद करो मैं खाऊंगा अपने आप वो नहीं चलेगा सिस्टम इज सेंटर में पानी देना खान देना होगा देन ऑटोमेटिकली इट विल कम टू यू विदाउट योर थिंकिंग अबाउट इट तो उसी प्रकार से हमारा और भगवान का रिलेशन इसी प्रकार से है कि भगवान केंद्र है भगवान रूट है सबकी इसलिए हम सबका पोषण हम सबका सेटिस्फेक्शन है भगवान को सेटिस्फाई करने में दिस इज द इक्वेशन इफ वी सेटिस्फाई लॉर्ड देन इन रेसिप्रोकेशन वी बिकम सेटिस्फाइड दैट मीन्स इन नटशेल देर इज अ लविंग रिलेशनशिप एग्जिस्टिंग बिटवीन अस एंड गॉड एंड बिकॉज ऑफ दैट लव रेसिप्रोकेशन ऑफ द लव वी फील हैप्पी कृष्णा इज ऑलवेज हैप्पी नोबडी कैन मेक हिम अनहैप्पी बट He is more happy. His happiness has got no limit. So when we act according to our natural position of loving him, then his happiness also increases. And our happiness also increases. So we become happy and Lord becomes happy. Okay? So isliye, very important point, atma ka satisfaction hai bhagwan ki bhakti mein. Ise bhakti kehte hain. भक्ति मतलब भगवान को संतुष्ट करने की इच्छा बिना किसी हेतु के बिना किसी बिजनेस ट्रांजैक्शन के बिना किसी स्वार्थ के कि भगवान मेरी नौकरी लगाओ तो आपको मैं इतना पैसा नारियल चढ़ाऊंगा इतना मैं ये दूंगा दिस इज कॉल्ड बिजनेस, दिस इज नॉट भक्ति, दिस इज बिजनेस. अगर आप ये करोगे तो मैं करूंगा. दिस इज कंडीशनल लव, बट लव इन द प्योर सेंस इज अनकंडीशनल. तो जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री है उसमें केवल प्रेम की बात की जाती है, मेरा और तेरा प्रेम कभी टूटेगा नहीं, सात जन्म रहेंगे, संसार हो जाए, कुछ भी हो जाए, बट इट नेवर हैपेंस इन प्रैक्टिकल लाइफ. सो प्रॉब्लम इज वी आर ऑल लुकिंग फॉर आवर लवेबल मास्टर. वी ऑल हैव दिस नेचुरल टेंडेंसी टू लव बिकॉज दिस इज द वेरी नेचुरल फंक्शन ऑफ लिविंग एंटिटी टू लव गॉड. बट ओनली थिंग इज वी हैव मिस्ड द ऑब्जेक्ट ऑफ लव. We have forgotten the real object of our love, and we are searching for this object in other people. Man is searching for that in women, women is searching for that in men. A she dog is searching for a man, I mean he dog, similar thing. It's nothing very extraordinary for human beings. For dogs, cats, everything is same. And this love has got then other ways, like love between mother and child, love between brother and brother, brother and sister, so many varieties. But ultimately, this is all our search of our lovable master, Krishna. But not knowing it, we are searching here and getting frustrated from here, then shifting to somebody else, then frustrated, then shifting to somebody else. And like that, shifting, 84 lakh species, going around shifting, no satisfaction. Because जब तक real master नहीं आएगा, real lovable object नहीं आएगा, how can you be satisfied? इसलिए आप देखो, हम सबकी इच्छा होती है, मुझे एक ऐसा आदमी चाहिए, ऐसा एक व्यक्ति चाहिए जिसको मैं अपना सब कुछ न्योछावर कर सकूं. This is the highest, Juliet and what is that? Romeo, Juliet. So we want to love beyond crossing all extremes. There should be nothing limited. You know, we want to cross all limits. There should be no hindrance. But when we try to love someone, we find there is some problem in this. I like 50% of him, but 40%, 50% don't like. Or maybe 60% or 40% don't like. If I would have got a person 100% perfect, then I would have completely sacrificed myself for him. But unfortunately, we never get such a person. Before love affair, we feel it is 100%, but after marriage, we find it only 10%, and then there is divorce. That shows that it is not done on love platform, because love cannot exist like that. It is on the bodily platform. Body means lust. It is not love. Love exists only between Jiva and Krishna. तो इसलिए हमारे को satisfaction मिलेगा जब हम अपने जो ये प्रेम है भगवान के प्रति उसको पुनर्जागृत कर पाएंगे. इट इज ऑलरेडी देयर, इट इज नॉट टू बी इन्वेंटेड और रीच समथिंग न्यू टू बी डन. इट इज ऑलरेडी देयर. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन ए मैन बिकम्स यंग, अटेन्स प्यूबर्टी, व्हाट हैपेंस? बाय द लॉज ऑफ नेचर, नेचुरली ही बिकम्स अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अपोजिट सेक्स. He doesn't have to make some formula or some understanding for it. Not even human beings, but any living entity. This is by natural for that body. So, similarly, our love for Krishna is natural that way. But it is simply covered presently. It is simply to be reawakened. Okay? Halaki hum log example diye स्त्री पुरुष के प्रेम का, भगवान के साथ प्रेम को समझाने के लिए, बट ओरिजिनली वो जो स्त्री पुरुष का है, दैट इज एक्चुअली ओरिजिनली कमिंग फ्रॉम कृष्णा, परवर्टेडली रिफ्लेक्टेड इन मैन एंड ह्यूमन बींग्स. बट बिकॉज टू एट प्रेजेंट एज वी आर मोर फेमिलियर विद दैट, सो वी आर यूजिंग दैट परवर्टेड थिंग टू एक्सप्लेन द रियल थिंग. दैट इज परवर्टेड रिफ्लेक्शन. इस भौतिक जगत में जो कुछ भी हम देख रहे हैं वो आध्यात्मिक जगत का परवर्टेड रिफ्लेक्शन है. यहां पर भी माँ बाप संबंध है, पारिवारिक संबंध है, ये सब है क्योंकि आध्यात्मिक जगत में है, लेकिन इस समय बिगड़े रूप में है. इसलिए हम देखते हैं भगवान के साथ भी हमारा संबंध होता है, अलग अलग रसों में होता है. कोई भगवान के पिता के रूप में भगवान की सेवा करना चाहते हैं, कोई माँ के रूप में सेवा करना चाहते हैं, कोई मित्र के रूप में करना चाहते हैं, कोई पत्नी के रूप में करना चाहते हैं, कोई प्रेमिका के रूप में करना चाहते हैं, कोई दास के रूप में करना चाहते हैं, और ये रिलेशनशिप यहां पर है। लेकिन सेंटर इज नॉट कृष्णा, सेंटर इज डिफरेंट, दैट इज अ प्रॉब्लम। तो इसलिए एसेंस ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ इज जस्ट सिंपली प्यूरिफाइंग आवरसेल्फ, नथिंग बिग, इट्स वेरी सिंपल, इट इज नॉट समथिंग न्यू टू बी अटेंड, इट इज ऑलरेडी विद इन अस, इट्स अ नेचर, इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशन ऑफ जीवा, जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास, जीव का स्वरूप ही है नित्य कृष्ण दास, पानी का गुण ही है लिक्विडिटी, लेकिन टेम्परेचर कम हो गया इसलिए आर्टिफिशियली इट अपीयर्स एज सॉलिड, जस्ट टू ब्रिंग इट टू द राइट टेम्परेचर ऑटोमेटिकली अगेन इट विल बिकम लिक्विड। तो सिमिलरली आईना है, आईने में नेचुरली वी कैन सी अवर इमेज रिफ्लेक्शन, बट इफ इट इज कवर्ड विद डस्ट वी आर नॉट एबल टू सी, सो व्हाट नीड टू बी डन, जस्ट रिमूव द डस्ट। तो सिमिलरली हम सभी के हृदय में आत्मा के लिए भगवान का प्रेम नित्य रहता है, अभी भी है, हमेशा, उसको कोई खत्म नहीं करता, बिकॉज इट इज कॉन्स्टिट्यूशनल, यू कैनॉट टेक आउट लव ऑफ फॉर गॉड फ्रॉम ह्यूमन बींग्स, बट इट कैन गेट कवर्ड टेम्परेली। इसलिए स्पिरिचुअल लाइफ मीन्स अनकवरिंग सोल सो दैट द नेचुरल लव फॉर गॉड श्री कृष्णा gets revived. That's it. That's the essence of spiritual life. Now there are prescribed way how to revive it. There is a prescribed way by Krishna himself, by Shastras himself. How to revive that love? How to revive that love? तो जो अशुद्धियां हैं हमारे हृदय में जिनकी वजह से भगवान का प्रेम ढक गया है, क्या है वो अशुद्धियां? हमने डिस्कस किया contaminated consciousness के क्या गुण हैं, प्रदूषित चेतना के लक्षण क्या हैं? आई एम द प्रोप्राइटर, बट एक्चुअली हु इज द प्रोप्राइटर? कृष्ण इज द प्रोप्राइटर। देन नेक्स्ट सिम्टम, आई एम द एंजॉयर, बट हु इज द एंजॉयर? कृष्ण इज द एंजॉयर। यू आर टू बी एंजॉयड, एवरीथिंग एल्स आल्सो टू बी एंजॉयड, एंड यू नीड टू सिंपली ऑफर एवरीथिंग टू कृष्ण फॉर हिज एंजॉयमेंट, बट राइट नाउ व्हाट वी आर डूइंग, grab everything for your enjoyment, but this has to be changed into offer yourself as well as whatever is with you, whatever you can offer it to Krishna. This is practiced in temple, bring fruits, bring everything, offer it to God first, because he is the enjoyer, and then as prasadam you take to maintain this body, so that this body can be used in serving him. So ye gandagi hai, that I am the enjoyer, I am the proprietor, ये है contamination, गंदगी, इसको शुद्ध करना है। जैसे ये contamination खत्म हुआ, original consciousness will be revived, that I am servant of Krishna, and we will start feeling eternal spiritual happiness in serving Krishna, that is to be experienced. Spiritual life is not just theory, it is very much practically can be experienced. So now we are experiencing so much happiness in enjoying our senses, but when you will practice the instructions of Bhagavad Gita, you will find that gradually that happiness which you are getting by enjoying this material world reduces, and the enjoyment today, at present there is no enjoyment in serving God, very little enjoyment. If one is asked, read Bhagavad Gita, very less interest. And read novel, very big interest. So, vartaman mein Bhagwan ki seva karne mein humko bahut kam anand milta hai. But if you will practice this, your pleasure, enjoyment, satisfaction derived by serving Krishna will increase. So therefore we say it is scientific. You can practically perceive the effects of it. So how do you know that you are advancing in spiritual life? Your desire to enjoy this material world should reduce, and your desire to serve Krishna should increase. If this is happening, that means you are advancing in spiritual life, and the day will come when you will have all desire to serve Krishna and no desire to enjoy this material world. कभी कभी लोग इससे भयभीत हो जाते हैं, अरे मेटेरियल डिजायर से खत्म हो जाएंगे तो क्या होगा, देवी का वेरी मच। इसलिए कहते हैं ये भगवदगीता नहीं पढ़ना चाहिए, इससे विरक्ति आती है। हैव यू हर्ड दिस स्टेटमेंट, यू नो यू शुड नॉट रीड दिस, ये तो सब आपको बाबा बना देंगे ये सब घर। बट ट्राई टू अंडरस्टैंड, इफ यू आर रिमेनिंग अटैच्ड, इफ यू आर एंजॉइंग दिस मेटल वर्ल्ड, देन यू विल रिमेन इन दिस पिट ऑफ स्टूल। दिस मेटल वर्ल्ड इज अ पिट इन विच द पीपल पास स्टूल, इट्स लाइक दैट, इट्स सो मिजरेबल। बर्थ, डेथ, ओल्ड एज, डिजीज, दैट इज द रिजल्ट ऑफ योर पेटी एंजॉयमेंट फॉर सो कॉल्ड टेम्पररी मेटल एंजॉयमेंट। हाउ मच सफरिंग, उसके साथ में कितना कितना मेटल सफरिंग हमको मिलता है। फॉर अ लिटिल पीस ऑफ हैप्पीनेस, सम आई गॉट दिस स्टेटस, फॉर दिस लिटिल स्टेटस हाउ मच यू हैव टू एंडेवर, फॉर 20-30 years यू हैव टू वर्क हार्ड, एंड देन आफ्टर सम टाइम दिस स्टेटस विल गो। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ये जो भौतिक जगत में जो सुख है, जस्ट आई विल आस्क, सो उसके पीछे Why we should be attached to this? अभी भी बात है, लेकिन फिर मेरे परिवार का मैं क्या करूंगा, मेरी जिम्मेदारी क्या करूंगा। सो दैट इज द टीचिंग ऑफ भगवद गीता, दैट यू डू योर ड्यूटी एज यू डू योर वर्क एज ड्यूटी, नॉट टू एंजॉय। कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यू हैव अ राइट टू वर्क, यू हैव गॉट नो राइट टू एंजॉय। है, व्हाट डू यू मीन? I have to work and no enjoyment. Yes. Now it may seem very difficult. If you are working a business, you are having lakhs of money as income, according to this shloka, you are not entitled to enjoy that lakhs and lakhs of rupees. You are only entitled to work. Then the question will arise, then why I should work at all? The only motivation for the people to work is to enjoy the fruits, is it not? So if we say no, you should not enjoy the fruits because you are not the enjoyer, you should only work and not enjoy the fruits, then what is the motivation for this person, why you should work? So you should work as per direction of Krishna for his satisfaction and give the fruits to Krishna. This lakhs of rupees which you are earning, use it for Krishna's purpose. Usko Bhagwan ki seva mein lagao. The satisfaction which you will get by using it in Krishna's service will be unlimitedly crores time with no comparison higher than the enjoyment which you will get by using that crores rupees for your enjoyment. That is the motivation. Spiritual understanding. Ki my equation of happiness is not ki mera happiness mere indriya bhog mein hai, पर वास्तविकता है कि मेरा हैप्पीनेस, मेरी हैप्पीनेस लाई करती है भगवान की सेवा में। तो ये जो बिजनेस मैं कर रहा हूं, ये जो बुद्धि मुझे दे रहे हैं, ये कौन दे रहे हैं? ये भगवान दे रहे हैं। ये शक्ति भगवान दे रहे हैं। ये जो पैसा मैं कमा रहा हूं, ये मेरी संपत्ति नहीं है, ये भगवान की संपत्ति है। और क्योंकि ये उनकी संपत्ति है, इसलिए इसका हकदार, इसका एंजॉयमेंट किसके लिए होना चाहिए? कृष्णा शुड एंजॉय इट। एंड For maintenance of body, I need to have some enjoyment, some bhoga. I mean, I need to eat. So yes, that you should do as prasadam. Jo bhi Bhagwan se prasad leta hai, milta hai, Bhagwan ko pehle arpit karo. Because he is an enjoyer. And then for the maintenance of body, you take just necessary for this maintenance of this body. Because we have to keep this body fit to serve him. Is tarike se hamara pura jeevan ka kendra kya ho jayega? Simply to serve Krishna. And then you will be in spiritual bliss. Completely opposite. Now everyone is thinking, everything for me, and they are completely empty within. More you try to enjoy through your senses, more empty you will feel. More frustrated you will feel in the end. Please analyze it. Think of it again and again. And in your day-to-day life, try it. More you try to be enjoyer, more you feel empty within, frustrated. And more you try to serve Krishna selflessly, more happy you feel. Because that happiness is the happiness of you, soul, which really satisfies you. But the happiness of the body is not your happiness, so you feel empty. जैसे वो केज के अंदर पक्षी जिसको खा नहीं दिया, लाइक दैट. सो इट्स अ कंप्लीट पैराडाइम शिफ्ट जिसके बारे में हम पहले बोले थे. ऑल इक्वेशंस हैव टू बी रिवाइज्ड, ऑल डेफिनेशंस हैव टू बी रीडिफाइंड, बट इट कैन टेक वन बाई वन, नॉट इमीजिएटली, नॉट पॉसिबल. सो डोंट गेट इमीजिएटली वरीड दैट कि अभी क्या, कल से क्या होगा. सो देयर इज अ वे हाउ टू प्यूरिफाई, बट आई एम गिविंग यू द ओवरऑल प्रिंसिपल्स. तो ये जो शुद्धिकरण का प्रोसेस है, ये पूरी शुद्धि का प्रोसेस है, इसके लिए तरीका है. और उसका उदाहरण है भगवद गीता में कृष्ण अर्जुन. अर्जुन युद्ध क्यों करने आए थे? अर्जुन क्या बोलते हैं कि वो युद्ध क्यों करने आए थे? कि भगवान ये सब मेरे जो मित्र हैं, मेरे सब भाई हैं, इनको मार के जो ये राज्य मिलेगा मैं उसका क्या भोग करूंगा? मित्रों के बिना, परिवारजनों के बिना राज्य का भोग कैसे करेंगे, मैं कैसे करूंगा? आपके पास घर है, रेगिस्तान में घर है, कोई आता नहीं, कोई आपका रिलेटिव रहता नहीं. कैन यू एंजॉय दैट हाउस अलोन? नोबडी कम्स, नोबडी. एंजॉयमेंट ऑफ हाउस कम्स व्हेन देयर आर फैमिली मेंबर्स, व्हेन देयर आर फ्रेंड्स हु कैन कम एंड यू कैन शो देम एंड फील प्राइड, आई हैव सच अ बिग हाउस. अगर रेगिस्तान में पड़े हुए हैं, नोबडी इज एवर, नोबडी नोज दैट यू हैव अ हाउस, देन व्हाट एंजॉयमेंट यू विल गेट? सो अर्जुन बोलते हैं तो क्या फायदा होगा, राज्य मिल जाएगा लेकिन सब मर जाएंगे, देन हाउ विल आई एंजॉय माय किंगडम? तो अर्जुन वॉज थिंकिंग दैट आई हैव टू फाइट फॉर माई सेंस एंजॉयमेंट, एंड देन ही डिसाइडेड आई विल नॉट फाइट. दैट वॉज अगेन सेंस एंजॉयमेंट. द सेंटर वॉज सेम सेंस एंजॉयमेंट, दैट हाउ कैन आई बी हैप्पी बाई किलिंग माई ब्रदर्स. सो ही फर्स्ट वॉन्टेड टू किल, फाइट फॉर सेंस एंजॉयमेंट, एंड देन डिसाइडेड नॉट टू फाइट अगेन फॉर सेंस एंजॉयमेंट. एक ही सिक्के के दो पहलू. But then he heard Bhagavad Gita, and then Krishna told, why you have to fight? Because I want you to fight. Nimitta matram bhava savya sachin. Ye jitne bhi log yahan ekatrit hue hain, nobody is going to go back except you, Pandavas. This is already decided by me. So you become Nimitta. Nimitta means just instrument in my hand. So Krishna so told ki, don't think that you have to fight on your behalf. You have to fight on my behalf. I want dharma sansthapanarthaya sambhavami yuge yuge. I want that the king of the earth should be religious person, should be a person following religion. So I want you, Pandavas, to be the kings and not this Duryodhan and his party who are irreligious. So this is my desire that you should be the king, and so you should fight. And you will be victorious because I have decided it. But you be instrument. So, फिर अर्जुन ने समझ करके, all confusion gone, then he said, करिष्ये वचनम तवा, now I will do as you want. So, this is purification, this is transformation of consciousness. So, उसी प्रकार से ये जो activity है, कई activity, it will remain same. Same maintenance of body, same you can do job, everything same. But consciousness has to be purified. Now you are doing job, or everybody is doing whatever they are doing for what? To satisfy their senses. But then, after understanding Bhagavad Gita, you have to do everything for pleasure of Krishna. And you have to give the result to Him. That is spiritual life, that is purification. So, abhi, is consciousness ko effect karne ke liye, what is the process? There are टू लेवल्स. सबसे पहला तो हमें शरीर यापन के लिए इस भौतिक जगत में भी काम करना है. एक क्षण के लिए हम बिना काम के नहीं रह सकते. भगवद गीता डजंट टीच लेथार्जी. कृष्ण वॉज नेवर लेथार्जिक, अर्जुन वॉज नेवर लेथार्जिक. सो डिवोटीज डजंट मीन लेथार्जी. दे आर ऑलवेज एक्टिव, बट दे आर नॉट एक्टिव इन सेंस ग्रेटिफिकेशन, दे आर एक्टिव इन सर्विंग कृष्ण. तो इसलिए जो भौतिक जगत के कार्य हैं, इस शरीर के यापन के संबंधी कार्य हैं, फर्स्ट दे शुड बी एज पर डायरेक्शन ऑफ कृष्णा. व्हाट शुड बी डन, व्हाट शुड नॉट बी डन. तो एक आदमी चोरी करके अपना काम चला रहा है, परिवार का पालन पोषण कर रहा है, इज दैट अकॉर्डिंग टू शास्त्रस? नो. सो दैट ऑक्यूपेशन शुड नॉट बी डन. मेंटेन योर बॉडी नॉट बाई सिनफुल एक्टिविटीज, मेंटेन द बॉडी एज पर द डायरेक्शन गिवन इन शास्त्रस. देन यू वर्क एंड द रिजल्ट ऑफ द वर्क शुड बी गिवन टू कृष्ण एंड यू टेक प्रसाद दैट मच एज इज नेसेसरी फॉर मेंटेनिंग योर बॉडी एंड योर फैमिली देन नॉट दैट 24 आवर्स शुड बी स्पेंट इन मेंटेनिंग दिस बॉडी. आजकल क्या हो रहा है, पूरा समय सब लोग केवल इस शरीर यापन के लगा रहे हैं. बेसिक नेसेसिटीज के अलावा आर्टिफिशियल नेसेसिटीज हमने आज बढ़ा ली है. डू यू एग्री? सो मेनी आर्टिफिशियल नेसेसिटीज. व्हाट आर द बेसिक नेसेसिटीज ऑफ बॉडी? हवा तो फ्री मिलती है. नहीं, हवा सही बात है. हवा, रोटी, कपड़ा, मकान. रोटी के अंदर आ गया, हवा, पानी, सब रोटी के अंदर आ गया. रोटी, कपड़ा, मकान, सिंपल कहें तो. या तो दैट इज बिकॉज वी हैव मिसमैनेज्ड. कृष्णा हैज मेड ए सिस्टम दैट एयर इज फ्री. फ्री मीन्स नॉट फ्री इन द सेंस यू डिसोबे द लॉज ऑफ गॉड, देन यू हैव टू पे मनी फॉर इट. तो ये आधारभूत आवश्यकता है. लेकिन आज हमने अपनी आवश्यकताओं को बढ़ा लिया है, टीवी एंड कार एंड रेफ्रिजरेटर्स एंड वॉट नॉट. नाउ दे हैव बिकम ऑलमोस्ट नेसेसरीज, लाइक मोबाइल फोन्स. नाउ दे हैव बिकम नेसेसिटी, बट दे हैव बीन मेड एज नेसेसिटी. दे आर नॉट originally the necessity. You made a system that business is not possible localized. You have to be one here, there, here, there, here, there. So therefore it became necessity. So invention is the mother of necessity is the mother of invention. But actually today it is opposite. They invent and then make necessity of it. And then create a society in which it becomes very necessary. So artificial necessities ko badha liya hai, jiski wajah se for most of the people, even meeting the basic necessities have become more and more difficult. Out of this whole enjoyment, whole development, only very lesser and lesser section of people are exploiting. Majority of people are even feeling more difficulties to even meet their basic necessities of life. Aaj, ek vyakti ko apne pair pe khada hone ke liye खाना कमाने के लिए शुरू करने के लिए कितना साल प्रिपरेशन चाहिए? एटलीस्ट 25 to 30 years. करेक्ट? एटलीस्ट 25 to 30 years. तो ट्रेडिशनली जो हमारी सोसाइटी है उसमें जो इज अ डिटेल टॉपिक जिसमें वी हैव अ वेरी सिंपल लिविंग, लिविंग ऑन द लैंड, agriculture centered society, basic necessities, and time used for Ramayana, Mahabharata, Bhagavad Gita. So bachcha jab 12 saal ka 15 saal ka hua, he is doing something to, you know, grow his food or working with his father or independently. 15 years of age finished. But today at 30 years you start, and then every day how much, in general for most of people, how many hours a day they have to work? 10 to 12 hours. For how many days in a year? For all the months, for all the weeks, and maybe one day leave, that's it, weekly. But in traditional societies, 3 to 4 months in a year, they have to work for 8 hours, and that's it. Other time, only 1 or 2 hours. So, कहने का तात्पर्य ये है कि हम जो प्रगति कर रहे हैं उसकी वजह से even the basic necessities for most of people have become difficult. Of course, there are some who are luxurious life, but then because of lobh, because of greed, they are also not satisfied, and they are also working instead of 12 hours, 14 hours. That's a different story. Though they have everything, but it's still because they are greedy, so there is no limit, so they are also working more and more. Correct? So in nutshell, everybody is spoiling their life. So human life is not mean that 24 hours every day and every day in every month and all the months you have to work for your maintaining this body. Rather, our endeavor should be हाउ टू रिड्यूस, कम से कम टाइम में, कम से कम समय में कैसे बॉडी को मेंटेन कर लें, दैट इज कॉल्ड ह्यूमन इंटेलिजेंस. मोर इंटेलिजेंट इज अ पर्सन जो अपने शरीर की देखभाल कम से कम समय में कर ले. लेकिन आजकल जो ज्यादा बुद्धिमान है वो उतना ही ज्यादा बिजी है. सो दैट शुड बी द मोटो ऑफ लाइफ, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग. रिड्यूस योर डिजायर्स, रिड्यूस डिजायर मीन्स यू लिव हेल्दी लाइफ, यू लिव हेल्दी लाइफ बट नो अननेसेसरी थिंग्स, सो दैट यू कैन हैव टाइम एंड एनर्जी फॉर अंडरस्टैंडिंग भगवद गीता एंड प्रैक्टिसिंग स्पिरिचुअल लाइफ. तो हमने दो भाग बताए, वन यू वर्क विद अ मोटो ऑफ सिंपल लिविंग एंड यूज दैट एनर्जी, फल जो है भगवान की सेवा में लगाओ, और फिर जो बाकी समय है उसमें आप नाउ यू प्रैक्टिस द लाइफ विच इज यू आर गोइंग टू प्रैक्टिस इन स्पिरिचुअल लाइफ. दैट स्टार्ट्स विद चैंटिंग द होली नेम ऑफ कृष्ण. नाउ कम्स हरे कृष्ण महामंत्र. सो स्पिरिचुअल लाइफ के बहुत सारे अलग अलग प्रोसेस हैं अलग अलग एज में, बट द प्रोसेस रिकमेंडेड इन शास्त्र फॉर दिस एज इज चैंटिंग ऑफ द होली नेम ऑफ लॉर्ड. सो देर आर मिलियंस ऑफ होली नेम्स ऑफ लॉर्ड, दे आर ऑल इक्वली पावरफुल इफ दे आर बोनाफाइड, नॉट जस्ट विम्सिकल. दे आर इक्वली पावरफुल बट स्पेशली हमारे शास्त्रों में वर्णन है हरे कृष्ण महामंत्र का. कलिशंतरना उपनिषद के अंदर वर्णन है कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षडोशकम नाम नाम कली कलमश नाशनम नता परतर उपाय सर्व वेदेशु दृश्यते. ये ब्रह्मा जी ये वचन कह रहे हैं कि सभी वेदों में ये देखने पर निष्कर्ष निकाला जाता है कि कलयुग के अंदर इस 16 शब्दों के बने महामंत्र से अपने हृदय को शुद्ध करने के लिए और कोई श्रेष्ठ उपाय नहीं है. तो हमने कहा स्पिरिचुअल लाइफ का मतलब प्यूरिफिकेशन. सो लॉर्ड भगवान और उनके नाम दे आर इक्वली पावरफुल. देर इज नो डिफरेंस बिटवीन हिज नेम, हिज इंस्ट्रक्शंस एंड हिज पर्सनैलिटी, बिकॉज दे आर ऑन द एब्सोल्यूट प्लेटफॉर्म. भौतिक जगत में नाम और वस्तु में अंतर होता है. आपको प्यास लगी है तो पानी पानी कहने से आपकी प्यास नहीं बुझेगी, लेकिन एब्सोल्यूट प्लेटफॉर्म पर वस्तु और उसके नाम में कोई अंतर नहीं होता है. द नेम इज ऑल्सो स्पिरिचुअल, दैट हैज इक्वल पोटेंसी. सो द नेम कृष्णा एंड द पर्सन कृष्णा दे आर इक्वली पोटेंट. सो भगवान जो है ही इज लाइक सन, कंप्लीट प्योर एंड पावरफुल. तो कृष्णा है सूर्य सम, माया है अंधकार, जहां कृष्णा तहां नहीं मायर अधिकार. कृष्णा इज लाइक सन एंड माया इज लाइक शैडो, अंधकार, डार्कनेस. वेन एवर द सन कम्स इमीडिएटली व्हाट हैपेंस टू डार्कनेस, इट गोज अवे. सिमिलरली इफ वी ब्रिंग आवर सेल्फ इन कॉन्टेक्ट विद कृष्णा, देन वी बिकम, जो अंधकार है हमारे अंदर, माया है डिसिपेटेड. क्योंकि माया हमारे अंदर कैसे आई, ऊपर कैसे हावी हुई, बिकॉज वी टर्न्ड अगेंस्ट कृष्णा. सो व्हेन वी टर्न टुवर्ड्स कृष्णा देन अगेन वी कम इन लाइट एंड सो शैडो इज अगेन गॉन. तो इसीलिए वी हैव टू कम इन टच विद कृष्णा. द फर्स्ट वे, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वे टू कम इन टच विद कृष्णा इज बाय हियरिंग एंड चैंटिंग holy name of Shri Krishna in the form of this mantra, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Therefore, practically you will see, जब आप लोग ये हरे कृष्ण मंत्र का जब प्रारंभ करेंगे, जैसे मैं तो माला लेके नहीं आया, but they have this mala, chanting bag, दिखाएंगे ऐसे निकाल के बाहर. तो ऐसे ये माला है, इट हैज 108 बीट्स. तो हम लोग मीन्स शास्त्र के अनुसार, सभी आचार्यगण के अनुसार, एक एक मनके के ऊपर एक एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं. तो एक मन का हाथ में लेकर के, हाँ, कैन यू प्लीज शो हाउ टू होल्ड. राइट हैंड में इंडेक्स फिंगर यूज नहीं करके बिटवीन थंब एंड योर मिडिल फिंगर यू होल्ड ए बीड, बिटवीन थंब एंड मिडिल फिंगर यू होल्ड ए बीड, और एक बीड के ऊपर देन यू चैंट हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, देन नेक्स्ट बीड सेम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, लाइक दैट 108, एंड देन व्हेन यू रीच 108 देन रिवर्स गो बैक डोंट क्रॉस रिवर्स, दीज आर सम डिटेल्स ऑफ हाउ टू चैंट. तो टाइम एवरी डे यू शुड स्पेयर टाइम फॉर मेडिटेटिंग फॉर हियरिंग वेरी केयरफुली this holy name in the form of Hare Krishna mantra. So, Shri Prabhupada's instruction, hum log, jo dikshit hain, wo har din 16 rounds of this mantra, mala we do, 16 rounds of Hare Krishna mantra. And what you have to do, while japa means, carefully hear what you speak, and you should speak Hare Krishna mantra, and carefully hear it. So when you hear it carefully, then gradually this sound vibration, this is transcendental sound vibration. This is not ordinary sound. This is spiritual sound. Now, the quality will depend on how much sincerely and properly you are chanting. So initially it may not be completely spiritual sound that you are able to vibrate. But gradually as you are practicing, as you are reading Bhagavad Gita, as your misconceptions are going away, as you are becoming more and more sincere, the sound vibrated by you will become more and more pure. And so, the sound heard by you also will become more and more pure. And so, more effect you will perceive by chanting this mantra. And what will be the effect? How you know that it is affecting? Cheto darpana marjanam bhava mahadavagni nirvapanam. You will feel very soon, in 1 month or so, even less than that, if you are take to this chanting of Maha Mantra regularly every day and try to hear it very carefully, then within 1 month, 2 months, like that, you will be able to see that your heart is becoming purified of material desires. Principally, they are kaam, krodh, lobh, moh, mad, matsarya, enviousness, greediness, lust, anger. All these things you will personally perceive that it is getting reduced. And because of that, automatically you will feel peaceful. Why we are in unrest? Hamara man kyon shant nahi hai? Kaam, krodh, lobh, moh, mad, matsarya ki wajah se ashant hai. Man ki ashanti ka kaaran ye hai. Apne andar hriday ke andar hum log leke baithe hain ye sab, to iski wajah se man ashant hota hai. जब ईर्ष्या होती है तो दूसरे को देख करके और हार्ट बर्न्स, व्हाई इज गोइंग अप, देन वेयर इज अ क्वेश्चन ऑफ पीस. व्हेन यू आर लस्टी, देन वेयर इज अ पीस, यू बिकम डिस्टर्ब्ड, यू ऑलवेज रिमेन डिस्टर्ब. बट एज दीज थिंग्स गो अवे, ऑटोमेटिकली यू बिकम पीसफुल. एंड देन मोर देन पीसफुल, व्हेन यू डेवलप योर अट्रैक्शन टुवर्ड्स सर्विंग कृष्णा, यू बिकम ब्लिसफुल. नॉट जस्ट पीसफुल, यू बिकम ब्लिसफुल. सो पीसफुल इज now negative is stopped and blissful is positive is added. So this practically you will experience in your life. So it is not a material sound. You can try chanting recorder. Can you chant? And then you feel, what is the difference? You will feel bore and you can't chant, and there will be no effect of the heart. But this Hare Krishna mantra we are chanting, many people, many, many years, we never feel like, oh, now I should reduce my rounds. The desire is always, how I should increase my rounds. How I should chant more. But you try chanting anything else. Mic, or fan. You try it. You cannot do it. So it's a spiritual sound. So it's a special chance given to us by Chaitanya Mahaprabhu, जिन्होंने शास्त्र में से लेकर के हमको बताया कि कलयुग के लिए युग धर्म है हरि नाम संकीर्तन. तो जप करना और सब मिलकर के वाद्यों के साथ, मृदंग करताल के साथ, भगवान के आनंद के लिए और भगवान से प्रार्थना करते हुए कि अभी आप हमें शुद्ध करें, हमें मदद कीजिए, हमें शुद्ध करिए, हम आपके शरण में वापस आना चाहते हैं। ऐसी प्रार्थना के साथ जब हम हरे कृष्ण मंत्र गाते हैं या जप करते हैं तब धीरे धीरे हमारा हृदय शुद्ध होता है। तो इसलिए हर दिन आप नियम बनाएं कि मैं अपने लाइफ 24 आवर्स में 1 आवर या 2 आवर आई विल गिव टू चैंट हरे कृष्णा एंड रीडिंग भगवद गीता और सिमिलर लिटरेचर, प्रभुपाद बुक्स, भगवद गीता एज इट इज। दिस इज वन थिंग वी वॉन्ट फ्रॉम यू। ये 5 दिन का सेशन अटेंड करने का ये फल होना चाहिए कि कम से कम आप ये डिसाइड करें कि ओके फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स नॉट 24 आवर्स फॉर दिस बॉडी, सम आवर्स फॉर मी ऑल्सो, फॉर सोल, फॉर योर सेल्फ। सो एटलीस्ट सम टाइम, एटलीस्ट 1 आवर, कांट वी गिव इवन 1 आवर फॉर आवर सेल्फ, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, फॉर विच दिस होल बॉडी इज मीन, फॉर विच, फॉर दिस वी कांट इवन गिव। सो इनिशियली यू मे नॉट हैव सो मच इंटरेस्ट जनरेटेड, क्योंकि जैसे जॉन्डिस जिसको होता है तो उसको मीठी चीज मीठी नहीं लगती है, लेकिन जॉन्डिस का ट्रीटमेंट है मीठा, मीठा खाना वो उसका ट्रीटमेंट है। जैसे जैसे वो खाता है तो जॉन्डिस ठीक होती है, और जॉन्डिस ठीक होती है तो वैसे वैसे मीठा मीठा लगने लगता है। तो उसी प्रकार से भगवान की सेवा, भगवान का नाम, ये शुरू शुरू में कड़वा लगता है, इतना मीठा नहीं लगता है जितना कि फिल्मी गीत सुनना, उतना अच्छा नहीं लगेगा हरे कृष्ण मंत्र सुनना। लेकिन जैसे जैसे आप देखेंगे एज ए मेडिसिन यू कीप ऑन टेकिंग इट, ग्रेजुअली फिल्मी सॉन्ग का इंटरेस्ट कम होता है और हरे कृष्ण मंत्र जप करने का इंटरेस्ट बढ़ता है। सो स्पेयर टाइम सेपरेटली टू चैंट हरे कृष्णा, टू रीड भगवद गीता, एंड देन फॉर दिस पर्पज एज आई अनाउंस यस्टरडे वी विल कंटिन्यू मीटिंग अगेन सो दैट वी कैन कीप ऑन डिस्कसिंग दिस थिंग्स, बिकॉज वी नीड टू हियर फ्रॉम द अथॉरिटीज अगेन एंड अगेन फ्रॉम भगवद गीता, टू नीड टू डिस्कस, आस्क क्वेश्चंस, क्लैरिफाइड डाउट्स। तो उसके लिए हम लोग मिलेंगे, वी आर स्टार्टिंग नेक्स्ट लेवल ऑफ कोर्स इन द फॉर्म ऑफ भगवद गीता स्टडी सर्किल। सो वी विल स्टडी राउ भगवद गीता इन डेप्थ, सम डेप्थ, नॉट इट्स डेप्थ लेस, सो वी कैनॉट कंप्लीटली कवर, सम डेप्थ मोर देन वॉट वी डिस्कस्ड इन 5 डेज, एवरी संडे 8 to 9:30, एंड देन 9:30 विल बी प्रसादम। सो दोज जो लोग बाहर हैं बड़ौदा के उनकी बात अलग है, बट अदर्स दोज हू वॉन्ट टू नाउ एनरोल योर नेम फॉर दिस संडे वीकली, ओनली वीकली वंस, बिकॉज वी नो दैट यू आर ऑल्सो बिजी इन जॉब एंड स्टडीज, सो एटलीस्ट वंस इन ए वीक फॉर 1.5 आवर्स वी विल मीट ऑन संडे। सो दोज ऑफ यू हु वॉन्ट टू रजिस्टर योर नेम्स, देर इज नो एज सच फीस फॉर इट, बट वी विल बी रीडिंग फ्रॉम भगवद गीता, सो इट्स एडवाइजेबल दैट यू हैव योर ओन कॉपी ऑफ दिस भगवद गीता एज इट इज, सो दैट यू कैन रेफर इट, रीड इट। And for students, there is a special discount. It will be 20 rupees discount. Kitne ka hai ye Bhagavad Gita? 80 ka hai. So 60 rupees they can get. Somebody has sponsored for students. For those who are earning, they can give even more. So, but at least for students, they can take 60. Others can get an 80 rupees. So it is advisable that you also have, all of you, a personal copy of this Bhagavad Gita, and then we will be taking up, there will be 3 sections in this, chapter 1 to 6, one section, chapter 7 to 12, one section, and chapter 13 to 18, third section. Like this will go on, and then more people will add, will join us. There is another 6-session course starting from Sunday. You can invite your friends, those who can only come on Sundays. This course will be only on Sundays. Sunday, 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 3 Sundays. 2 sessions in 1 Sunday covered up. So those who cannot come every day, they can only come in Sunday, on Sundays. We can inform them. And then these will also, they will also join with us. So in this way, we will stop here and we will end this prime introductory Bhagavad Gita course here. Thank you very much for coming here regularly. Most of you are coming every day. Except one day, because some reasons. So that's very nice. Hope this would have helped you understand some details of Bhagavad Gita. It will help you in your life. Thank you, Hare Krishna. Now, any questions regarding this? Yes. यस यस हाँ या Why does he want to? See, it is not a question of want. By nature, he is the enjoyer, he is the proprietor. If you have in bank balance, in your bank, 1 lakh rupees, you are the proprietor, then that means it is for your enjoyment. To enjoy is the function of living being, another again. To be happy is a function of living person. Anandamayo bhyasat. That is a symptom of living person to be happy. So, to enjoy means to be happy. But, master's happiness and servant happiness, way is different. Servant's happiness lies in serving the master. Master's happiness is in taking services from the servant. That is because of the constitution. But why we want to enjoy? That is because we are living. The symptom of living person is we want to be happy. But the only thing is, the mode of happiness, the mode of be happy is different. The master is by taking services and the servant is by rendering services. But of course, this is the primary level. The happiness derived by Krishna in taking services is superseded by Krishna's happiness in trying to reciprocate by serving his devotees. That is even higher level. Yahan se shuru hota hai abhi prem ka sansar. This is now the word of love. The word of love is different then. Krishna's people serving Krishna, coming to him in the temple, offering him prayers. You are so great. You are almighty. You are all powerful. It is pleasing to Krishna compared to a person who is coming, there is no God, I am everything. So definitely it is pleasing to Krishna. But when Mother Yashoda, she is chastising Krishna, hey, why you are breaking others' pots? Everybody is complaining to me. And she is chastising, she is going after Krishna to bind her. This is more, much, much, much more pleasing to Krishna than hearing the glorification that I am great, I am great. So this is now the word of love. So this will take time to understand. A person when he is in office, a big man, everyone is saluting him. Okay? So he is enjoying that. But when he comes to his home, he doesn't want that his son and his wife should salute him and should pay offices. He wants that his son should demand from him, Father, I want this. He should play with him in the play. He should ride on his shoulders and make him a ghoda. He likes that more. So Krishna is a person. Krishna is a person as we are persons. But he is a perfect person. So but first of all we have to understand him as a master. Then love will develop. And in the love then he becomes in love. Krishna wants to become, put himself in lower position than his servant. Of course, servant in that situation, love situation, never thinks that he may even think that he actually is bigger than God. But this is for the pleasure of Krishna then, not out of his false ego. मैं समझ गया कर्म करने में आनंद लेना यस या तो जो भी कृष्ण को संतुष्ट करने के अलावा आनंद है वो सब गलत है तो अपने कर्म को करने में आनंद लेना दैट इज ऑल सेंस एंजॉयमेंट तो वो होता है निष्काम कर्म मतलब एक होता है सकाम कर्म मीन्स कर्म करना फल को भोगने की इच्छा से मैं ये मेहनत कर रहा हूं जिससे मुझे पैसा मिलेगा और उस पैसे से मैं ये खरीदूंगा वो करूंगा दिस इज वन लेवल अनदर इज मैं कार्य कर रहा हूं फल को मैं आई डिस्ट्रीब्यूट इट बट आई जस्ट लव टू डू दिस वर्क एज अ ड्यूटी यस यस या Yeah, so this is also attachment to this material world. Because दिस इज ऑल्सो नॉट एंजॉयमेंट डिराइव फ्रॉम सर्विंग कृष्ण. सो दिस इज ऑल्सो मटीरियल. या बट स्टिल यू आर अटैच टू योर वर्क, बट यू शुड बी अटैच ओनली टू सर्विंग कृष्ण एंड नथिंग एल्स. तो आप अच्छे हुए, सकाम कर्म से अच्छा लेवल है निष्काम कर्म. यू हैव नाउ नॉट अटैच टू द फ्रूट्स बट स्टिल यू अटैच टू द वर्क कर्म में. बट इवन नेक्स्ट लेवल इज यू आर अटैच्ड सिंपली टू सर्व कृष्ण. एक उदाहरण देता हूं. युधिष्ठिर महाराज, युधिष्ठिर महाराज से बोला, जब अश्वत्थामा नहीं द्रोणाचार्य इतना तगड़ा युद्ध कर रहे थे कि लग रहा था कि सभी आज पांडव मारे जाएंगे. ओके तो अभी द्रोणाचार्य कैसे मरे? तो शुरू में पूछा था पांडवों ने जाके, आप कैसे मरेंगे? तो बोले मैं तो तभी मर सकता हूं जब मुझे न्यूज मिलेगा कि मेरा लड़का अश्वत्थामा मारा गया. तो फिर अश्वत्थामा से जाके पूछा आप कैसे मरेंगे? बोले मैं तो नहीं मरूंगा, ये मैं तो इस युद्ध के बाद भी जीवित रहूंगा, वो चिरंजीव हैं. बोले आई विल नॉट. सो बिग प्रॉब्लम. तो बीच में फिर अभी द्रोणाचार्य ने ऐसा युद्ध किया कि डिफीट वॉज श्योर. देन वॉट टू डू? देन कृष्ण एडवाइज दैट ओके अश्वत्थामा मरेगा नहीं, तो युधिष्ठिर तुम झूठ बोल दो कि अश्वत्थामा मारा गया. तो ये न्यूज सुन करके वो सोचेंगे, द्रोणाचार्य सोचेंगे मेरा पुत्र मारा गया, और वो फिर अपने हथियार रख देंगे एंड देन यू किल हिम. दिस इज द ओनली वे कृष्णा टोल्ड. देन युधिष्ठिर सेड आप क्या कह रहे हैं, मैं तो धर्मराज हूं, मैंने तो पूरा जीवन झूठ नहीं बोला, तो मैं अभी कैसे झूठ बोलूंगा? तो भगवान श्री कृष्ण बोले तुमने आज तक झूठ नहीं बोला, इसलिए तो तुमको झूठ बोलना पड़ेगा, क्योंकि तभी लोग तुम्हारी बात का विश्वास करेंगे, इससे तुम्हें कह रहा हूं बोलने के लिए. क्योंकि तुमने आज तक नहीं बोला, देयरफॉर यू शुड स्पीक, बिकॉज पीपल रिस्पेक्ट यू, देयरफॉर द्रोणाचार्य विल यू नो बिलीव. इफ आई विल से देन हु इज गोइंग टू बिलीव, बिकॉज कृष्णा इज नोन एज अ ट्रिकी पर्सन, सो हु विल बिलीव? सो देयरफॉर ही सेड देयरफॉर यू हैव टू स्पीक. बट युधिष्ठिर वॉज हेजिटेटिंग, हाउ कैन आई स्पीक, हाउ कैन आई स्पीक? देन कृष्णा सेड ओके डोंट हेजिटेट, व्हाट आई विल डू, देयर इज अ एलिफेंट नेम्ड अश्वत्थामा इन अवर कैंप, सो वी विल किल दैट एलिफेंट. तो यू जस्ट से अश्वत्थामा मारा गया, नर नहीं कुंजर. तो जब तुम बोलोगे अश्वत्थामा मारा गया, और जब बोलोगे नर नहीं नर और नहीं कुंजर बोलोगे, तो मैं शंख बजा दूंगा. सो यू विल नो बडी विल हियर दिस. सो कृष्णा डिड लाइक दिस एंड द्रोणाचार्य यू नो अल्टीमेटली वॉज किल्ड. सो वॉट हैपेंड आफ्टर दिस इंसिडेंट? युधिष्ठिर महाराज रथ यूज टू मूव अबव द ग्राउंड, इट विल नेवर टच द अर्थ. ही वॉज सच ए पायस, ही वॉज हैविंग स्पेशल पावर्स. बट आफ्टर दिस इंसिडेंट वेन ही हेजिटेटेड टू स्पीक वॉट कृष्णा वॉन्टेड हिम टू स्पीक, हिज रथ केम डाउन. सो ही वॉज धर्मराज, ही विल नॉट डू एनीथिंग रॉन्ग, and he didn't do anything wrong, but because he hesitated to fulfill Krishna's desire, his wrath came down. So nishkam karma is better than sakam karma, but it is nothing in front of doing for Krishna. For Krishna there is no that this is my duty. For a bhakta duty is whatever Krishna says. If Krishna says you kill your brother, what? It is not my duty. But devotion is you do it because Krishna wants, and ultimately whatever Krishna wants is the highest religious principle. It will be good for brother, it will be good for you, it will be good for everyone. So ye attachment hai apne kartavya se, attachment. So don't derive pleasure out of it, that is also attachment. You have to go still higher, you have gone higher, that's good, but you have to still go higher, that is bhakti. Isliye wo karma yog hai, nishkam karma yog, par usse bhi aage hai bhakti. That you be attached only to serve Krishna. That's it. थोड़ा तेज बोलेंगे, सुनाई दिया. हाँ अच्छा ओके. हाउ मच टाइम डू वी हैव? एनीबडी कैन वी टॉक फॉर मोर 10 मिनट्स मोर? Anybody has disagreement with this? Anybody has to go? No. कृष्णा डजन, अच्छा अच्छा ओके, एक्चुअली कृष्णा वॉन्ट्स अस टू एंजॉय, दैट्स वाई ही इज कमिंग एंड टेलिंग यू ही डजन नीड अवर सर्विसेज. ही इज नॉट दैट इन द गोलोक ही इज सफरिंग लैक ऑफ मैन पावर, हु इज गोइंग टू सर्व हिम. लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानम, इन हिज स्पिरिचुअल, द लिविंग एंटिटीज इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड आर मच मच मोर देन दोज इन दिस मटेरियल वर्ल्ड. एंड इवन इफ Nobody is there, he is Atmaram. He doesn't need that. He is self-sufficient also. So Krishna, when he is advocating, he is coming to tell us, please serve me. It is not for his benefit. It is first for our benefit. Father is saying, you please, why you are going, you listen to me, you do what I say to you. So it's more than father, it is for son's benefit that he is telling. So similarly, Krishna's advising us not to try to enjoy is because he knows that we cannot enjoy because we are not the enjoyer. We cannot enjoy that way. That is against our constitutional position. By that way, we will only suffer. So therefore, he advises that your real enjoyment lies in surrendering to me, in loving me. Love is founded on surrender. But he is not a type of enjoyer like an exploiter. Don't think of Hitler when we say, he says surrender to me, not like a Hitler. So Krishna's request to surrender is out of his compassion because that is our real nature. By surrendering to him, by his reciprocation, he makes us happy. Therefore he wants us to surrender, not to exploit us. Exploiter, the person exploited becomes feels miserable. But when we surrender to Krishna, do we feel miserable? We feel jubilant. Therefore, it is not a Hitler type of proposition that I am great, I am superior, you have to surrender to me. Rather, it is because of its natural position, because it is constitutional position of Jiva to surrender, to be subservient to God. Therefore, if we are in this position, it is like fish in water. Therefore, Krishna advises us. Varnashrama. So, Varnashrama. Varnashrama is a system devised by Krishna himself, given by Krishna himself, how to arrange this society perfectly. In your company, there is one R&D department, then there are managers, then there are workers, like that there is division. So similarly, Krishna says, Hamari society ko dhang se chalana hai, human society ko, there should be division of work. There should be some people who are intelligent class of people. Intelligent class of people does not mean PhDs and scientists. Intelligent class of people means those who understand Krishna's will and can tell that to people. That is intelligent class. It can be PhD or it can be anyone who is ready to understand this. So that is called intelligent class. Who can direct the society? Who can give direction to society? Second, those who can protect the society from irreligion. Third, dusre ko bolte hain kshatriya, pehle ko bolte hain brahman. Third, the vaishya, those who can produce the necessities of life. Agriculture and cow protection is their function, is their work. And fourth, the labor class, those who independently cannot do, but they can assist all the other three classes. So, varnashram means for the material needs, for the material arrangement, material management, how many of you are MBA students? Okay. For MBA, this is a very important point. If you understand this, and if you, I don't know how much you can practice it, because you have a very strict conditioning, you know. But actually, if you understand, this is the management. Krishna's management system. That you arrange a society that there should be, for the material thing, there should be four departments. Har ek ka alag alag function hai. जैसे वैश्य काम है कृषि गोरक्षा वाणिज्यम, टिल द लैंड प्रोड्यूस फूड, गोरक्षा, गोरक्षा करो, मिल्क प्रोडक्शन, और उन प्रोडक्ट्स का जो एक्सेस में हो उसका वाणिज्य करो, ट्रेड करो. बट टूडेज वैश्यास, व्हाट दे आर डूइंग, मैन्युफैक्चरिंग अननेसेसरी थिंग्स, एंड देन थ्रू द एडवर्टाइजमेंट provoking them to people to purchase unnecessary things. That is a specialty of MBAs, marketing people, to make people purchase things which they don't need, which nobody needs. Make them convinced that you need it and you can't live without it. But this is not Krishna's Vaishya. Krishna's Vaishya is not insane man. He is not lobby. He works according to Krishna's direction. He produces food which is necessary for human beings. And this is a stable economy. Isn't it? If you are producing artificial thing, your business will depend on competition. New production of new bike model, it will not last. We have to have a new model. Because it is artificial thing. But potatoes, do you need new models of potatoes? You don't need new models of potatoes. You don't need new models of rice. Potato is potato, everybody will need. And they will need. But artificial necessities, today people will need, today, tomorrow they will not need. So then to make them feel needful, you have to market it. So this makes system unstable. Unnecessary anxiety, unnecessary complications, and then exploitation. But if Krishna system is followed, economy should be based on production of grains and milk. Economic problem solved. Instead of these big skyscrapers, we can live very comfortably and very simply in mud huts. We used to live, the whole history humankind used to live. But now we are exploiting nature to make these things, and ultimate effect is we are becoming entrapped in the complications generated by this. Like a cocoon, silkworm, who gets entrapped in its own house and gets buried in it. Similarly, on the name of material advancement, we are making a society that we are getting buried under the complications created by us. Ozone layer depletion, global warming and whatnot. But if we follow Krishna system, it is self-sustainable system. Self-sustainable system. And society should be localized. No import, export, big import, import. Apples are coming from New Zealand or somewhere, and then you have to eat. You will die without apples. If in your locality santra ho raha, santra kha ke santushto, why you want apples to be imported from there? And then there is big import system, export system, and for import export system there is fuel needed, and then you extract the fuel, and now the rates are increasing, and then there is Arabians and Americans will fight to control this thing. And then terrorism will be there. And then you say, what is happening to the world? First you create the problems. And then you try to solve the problems. And in the process of solving problems, you create another new problems, which are more complicated than the previous problems. And in this way, your complications increases. So if you follow Krishna's system, everything is there. Maintain the system. Economy should be based on Krishi Goraksha Vanijyam. And Kshatriya, he should be Raj Rishi. He should be powerful, heroic. Not that सभी सोल्जर्स को गरीब जो बेचारे सोल्जर उनको वो फ्रंट पर हैं और मैं कहीं छुप करके बैठा हूं आदेश दे रहा हूं कि यह कर दो मार दो मेरे में खुद जान नहीं है कुछ करने की. द क्षत्रिय मीन्स ही विल बी इन द फ्रंट नंबर वन पर्सन एंड फाइटिंग इट विल टेक ओनली फ्यू डेज. क्षत्रिय किंग इज किल्ड फाइटिंग इज फिनिश्ड डिसीजन इमीजिएटली डिसीजन आ गया क्या होना है. नॉट कई साल तक युद्ध चलता जा रहा है सब जनता मर रही है सब नागरिक मर रहे हैं और राजा भी वह बैठा है अपने सेल्फिश एम्स को फुलफिल करने के लिए. So perfect Kshatriya. And Brahmin, who is Shama Dama Tetiksha, self-controlled, very simple and straightforward, having faith in God, following his instructions and teaching others about him, that is Brahmana. And Shudra, very subservient, he serves others very faithfully, different arts, he's expert. Like that society should be maintained. And then there are four ashramas. Is for spiritual advancement of everyone. Sabse pehle Brahmacharya Ashram. Initial 25 years, there should be education about the purpose of life. There is no need of education about how to apni jivika kaise kamani. Animals, do they have any education system for earning their livelihood? Who teaches them how to eat and where to get the food? By nature, ahar, nidra, bhay, maitun, it is by nature everybody knows. Now in today's education system, they are introducing sex education. Animals without sex, they are having much better sex. and human beings need this education. And 25 years is spent in learning technology. How do we be able to stay on our legs? But actually, you can stay on your, I mean, you can keep your body simply by growing food for which you don't need such big degrees. Now, how much money you have to spend to get entrance into this medical or engineering or MBA? Now, shooting up. Now, for MBBS, when I was studying, it was some 15 lakh rupees. Now, it's gone up quite in good institutes. And for engineering, everything, you have to pay so much money. So, you, first of all, take a loan to get entrance, and then after the degree, whole life you spend to give that loan back. So, then that is the life. So, unnecessary complications. लेकिन पहला जीवन होना चाहिए जिसमें चरित्र सिखाया जाए बच्चे को. टुडे आज स्कूलों में क्या सिखाया जा रहा है? चरित्र सिखाया जा रहा है? चरित्र से उल्टा सिखाया जा रहा है. जो जितना ज्यादा आगे तक पढ़ेगा उसका चरित्र उतना ही खराब होगा. करेक्ट. स्कूल लाइफ से व्हेन यू एंटर कॉलेज लाइफ, व्हेन आई एंटर्ड कॉलेज लाइफ, इन माय क्लास देयर वर ओनली 5-6 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 150 हु वर स्मोकिंग. एंड व्हेन आई पास्ड आउट आफ्टर 5.5 इयर्स एमबीबीएस, 90% ऑफ देम वर स्मोकिंग. And 20-30% were chain smokers, and 10-20% were drunkards. And very clearly, when they entered, they were bilkul saaf suthre bacche the. And then seeing the other seniors, they took up. And you know better than me today what's happening. So is this education system which is teaching us how to become degraded, lower than human beings? So no, brahmachari. Learn about the value of life, aim of life, and then enter grahastha ashram. Then you are entering as a grahastha ashram, then you will behave like a grahastha. Grahastha ashram is not license for sex. Grahastha ashram means responsibility that you bring up children and make them Krishna conscious. That is grahastha ashram. Then after 50 years, when the children are grown up, then retired life. No more earning money. There is a limit to earn money, limit to social responsibilities. Now your son is grown up. Now you hand him over. Let him take care of the families, and then you spend your time fully understanding Krishna and practicing devotional life like that. And then, if possible, take sannyas. This is the system of varnashram. Yes. Okay. Population problem is not the problem. अगर अनाज population problem है और हमको सबसे पहले क्या चाहिए? अनाज चाहिए ना. टीवी तो नहीं चाहिए ना. तो सबसे पहले तो टीवी की फैक्ट्री बंद करनी चाहिए ना, अगर population बढ़ रही है तो. है या अगर पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से प्रॉब्लम है, सो व्हाट द कॉमन इंटेलिजेंस विल से, भाई अगर खाने के लाले पड़ रहे हैं तो टीवी क्यों बना रहे हो? लेट एवरीबडी फर्स्ट ईट. सो स्टॉप ऑल इंडस्ट्री फर्स्ट, ग्रो फूड. सो पॉपुलेशन प्रॉब्लम इज नॉट द प्रॉब्लम. दिस इज प्रॉब्लम क्रिएटेड बाय दोज हु वांट टू एक्सप्लॉइट. दे टेल अस पॉपुलेशन प्रॉब्लम. एनिमल किंगडम, हाउ मेनी इज पॉपुलेशन, इज एनी पॉपुलेशन प्रॉब्लम इन एनिमल किंगडम? Is their population much more than us or not? You see, in one small hole there are thousands of ants. They're not having any population problem. Why? Because the God who has made, he is not fools like us. When he creates perfect system. When he sends living entities, there is system for their maintenance. The earth can produce any amount of grain if you are following the system of laws of nature. But if not, then she will restrict. This is governed by God. If there are rains properly, same amount of land will produce many times. So problem is not population, problem is our rebellious nature against God. That is the problem. Yes. Thoda tez bolenge. मोक्ष का, यस. ट्रेनिंग से, मन बंधन और मोक्ष दोनों का कारण है, तो माइंड कैन बी ट्रेन हाउ टू कीप अंडर कंट्रोल, हाउ टू कीप सेंस अंडर कंट्रोल, दैट ट्रेनिंग इज देयर, दैट्स वी आर ट्रेनिंग हियर. हाउ वी आर ट्रेन, फर्स्ट ट्रेनिंग चैंट हरे कृष्णा. व्हेन यू स्टार्ट चैंटिंग हरे कृष्णा, योर हार्ट बिकम्स प्यूरिफाइड, योर माइंड लस्ट एंगर ग्रीड रिड्यूसेस, सो योर माइंड बिकम्स पीसफुल, इट कम्स अंडर योर कंट्रोल, बिकॉज नाउ यू आर यूजिंग योर माइंड इन सर्विस ऑफ कृष्णा. तो मन कंट्रोल में आ गया. देन अदर थिंग्स ऑल्सो, गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ब्रह्म मुहूर्त, यूटिलाइजिंग दैट टाइम फॉर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, ईट ओनली कृष्ण प्रसादम. सो ऐसे करके यू बिकम ब्राह्मिना, यू बिकम कंट्रोल ऑफ योर सेंसेस लाइक दैट. यस, बट वॉट इज द प्राइमरी मैसेज ऑफ अवर एजुकेशन सिस्टम, वॉट इज द एम ऑफ लाइफ अकॉर्डिंग टू अवर एजुकेशन सिस्टम? नो, इट टीचेस. टीचिंग नॉट हैज टू बी इन वर्बल फॉर्म. एवरी कतरा कतरा हमारे एजुकेशन सिस्टम का बता रहा है कि एम ऑफ लाइफ क्या है. अदरवाइज वाई दिस टीचिंग इज देयर? वॉट इज द एम ऑफ दिस टीचिंग? बहुत ही जगत में सिखाती है, पर व्हाट इज अ फोर्स? अर्न मोर एंड मोर मनी. वेरी सिंपल मैसेज. इट नीड नॉट बी ऑल ओवर स्कूल्स, ऑल ओवर टीचर्स. व्हाट दे आर सेइंग, बेटे बी वन नंबर वन. हमारे स्कूल से टॉप टेन द लिस्ट ऑफ आईआईटीज, एमबीएस, एवरीथिंग इज. द इनलेड थिंग इज दैट सक्सेस ऑफ लाइफ मीन्स एबिलिटी टू अर्न मोर, have a better position in the society, that is called success of life. नहीं नहीं नहीं, एक मिनट. आईआईटी की ट्रेनिंग की जरूरत क्या पड़ी? बिना आईआईटी के बहुत ही जगत नहीं चलेगा, तो फिर आईआईटी की जरूरत क्यों पड़ी? सोचिए इस बात पर. यस, सो इंजीनियर्स क्या बनाएंगे? इंस्टेड ऑफ मड हाउसेस, दे विल बी एक्सपर्ट टू मेक लग्जरीज. मड हाउसेज, देयर इज नो प्रॉब्लम ऑफ अर्थक्वेक, बिकॉज इफ मड विल फॉल, नथिंग विल हैपन टू यू. दिस प्रॉब्लम ऑफ अर्थक्वेक इज ओनली बिकॉज यू वॉन्ट टू मेक स्काई स्केपर्स. नहीं नहीं, जस्ट हाउ मेनी इन आईआईटीज रिसर्च वर्क और वॉट एवर इज गोइंग ऑन आईआईटी और विच एवर जनरल, हाउ मेनी आइटम्स आर फॉर द बेसिक नेसेसिटीज एंड हाउ मच टाइम इज स्पेंड फॉर आर्टिफिशियल नेसेसिटीज? मोर, करेक्ट. सो देन द इंजीनियर्स are a part of that whole society which is geared around encouraging people to live more lavishly. You are a part of that system. That's why IITians, because they are researching those things which will provide luxuries to the society. That means what? Encouraging people for luxurious life. So indirectly or directly, you are becoming part of that system which is centered around that we should progress. IIT means progress. We should, so for society's progress. And how the progress of society is defined? In terms of ability to exploit material nature more and more for our comforts. Yes, you see? So ultimately, it may not be in terms of written statements in the IIT books, but without saying, the whole attitude, the whole atmosphere is that of encouraging towards sense enjoyment. एडवांसमेंट ऑफ लाइफ मीन्स एबिलिटी टू एंजॉय दिस मेटल वर्ल्ड बेटर 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 एंड बेटर. डोंट यू एक्सेप्ट दिस? व्हाट इज द टुडेज डेफिनेशन ऑफ एडवांसमेंट? नहीं, वो दूसरा पहलू भी है, वो दूसरा पहलू भी है, पर वो पहलू कैसा है कि एक आदमी अपने सिर पे हथौड़ा मारता है और फिर डेस्प्रिन लेता है, बोलता है अगर ये डेस्प्रिन नहीं होती तो ये सिर दर्द का क्या होता. लेकिन सिर दर्द क्यों हुआ? तुमने पहले हथौड़ा मारा. एनालाइज इट. ओके, हथौड़ा कोई मारता है पर डस्टबिन आप देते हैं. बट द थिंग इज दैट एक आदमी बट थिंग इज दैट वो हथौड़ा मारने की नौबत क्यों आ रही है? स्टॉप दैट. सो यू आर टेकिंग द क्रेडिट बिकॉज समवन इज फर्स्ट ऑफ हैमरिंग यू. बट तो ये अच्छाई क्या है? रिलेटिव अच्छाई है. पहले बुरा करके फिर अच्छा करना है. बट थिंग इज दैट पहले उसको बिगाड़ा ही क्यों? मेडिकल सिस्टम की बात कर रहे हैं आप आज. अगर लोगों का जीवन शहर की जगह गांव में हो, जहां शुद्ध हवा हो, खुला वातावरण हो रहने के लिए, काम करते हो लोग, एक ही जगह सीट पर बैठ के पूरे दिन नहीं रहते हो. आई एम ए मेडिसिन मैन, आई नो वेरी क्लियरली दिस लाइफ इज वेरी वेरी हेल्दी लाइफ. मोस्ट ऑफ द डिजीजेस यू विल नॉट गेट. सो देन व्हाट मेडिसिन? मेडिसिन इज अ पार्ट ऑफ द मॉडर्न सोसाइटी. मॉडर्न सोसाइटी हैज मेड अ लाइफ सेडेंटरी लाइफ एंड पॉल्यूशन एंड ऑल दैट थिंग. And then you need better, higher medicines. In fact, big antibiotics and all those things. So definitely it is help. But help after creating problem. Yes. Yes. Yeah. Okay. So, this can be accepted as a transitory mean. I'm not saying ki overnight everything's going to change. You have to stop engineering, you have to stop medicine. I'm not going to say that. I'm not saying that. But please understand very clearly that you are not doing something wonderful. We have spoiled the things more. What Lord has already given, we have spoiled it. First, we have to understand this. Now, for time being, we are forced to continue doing this. That's another thing. But if you understand very clearly, it's not that man has improved over God. That we have to clearly understand. Everything is? Very good question. Do you think everything is planned? If everything is planned, then what is the need for this discourse? Then everybody will do anyway whatever they are destined to do. Then what is the point in teaching? What is the point in giving Bhagavad Gita? Then Krishna says, do this, don't do this. If everything is already planned, then why he says, do this and don't do this? So not everything is planned. Now, according to our action, we get certain reaction. But there is a freedom to respond to that reaction. So there is some freedom. But at the same time, there are some things which are overall, the backup is planned. If you are in an aeroplane, there are some things which are fixed and some things which are in your hand. You can get up from the seat, you can lose your belt, you can go to the bathroom. But if you say, I want to go down immediately, this you cannot do. So certain things are fixed up. Now you are in the air, it's a time, 1 hour flight, you have to wait for 1 hour. But within that, certain things is in your hand. So similarly, जो भी हम कार्य करते हैं उसके अनुसार certain things get fixed up. Your birth, if somebody is born blind, somebody is born with handicap, somebody is born in rich family, somebody is born in this family. Like these things, they are fixed up. You can't change it. But then, you are born rich. But then somebody by using that richness is wasting his money in prostitution and gambling, and somebody is using that money in coming to Krishna, giving it for making temples. So there is some थिंग रेस्पॉन्स सो इज इन योर हैंड. जैसे हमको एक क्षेत्र दिया गया है, अभी क्षेत्र की बाउंड्री दे दी है, ए प्ले ग्राउंड. सो बाउंड्रीज आर फिक्स्ड, बट देन विद इन द प्ले ग्राउंड यू कैन प्ले हेयर और यू कैन प्ले हेयर, यू कैन प्ले दिस वे और दैट वे, लाइक दैट. सो वी हैव बीन गिवन अ पर्टिकुलर बॉडी, सो सर्टेन थिंग्स आर फिक्स्ड, बट देन विद इन दैट देयर इज सम फ्रीडम. बिकॉज ऑफ दैट रेस्पॉन्स यू विल मेक द नेक्स्ट थिंग्स, नेक्स्ट सेटअप, एंड देन यू विल एक्ट इन दैट नेक्स्ट सेटअप एंड क्रिएट द नेक्स्ट सेटअप, लाइक दैट इट विल गो ऑन. फॉर एग्जाम्पल यू स्टडी एंड बिकॉज ऑफ दैट स्टडी यू मेक द सिचुएशन फेवरेबल पासिंग द एग्जाम. सो सिमिलरली एक्शन विल क्रिएट योर नेक्स्ट थिंग्स. इट्स 9:15. हाँ वेरी गुड क्वेश्चन. तो भगवान ने बोला कि वो निमित्त मात्र है अर्जुन, तो क्या हम भी ऐसे निमित्त हैं? अगेन सिमिलर कि निमित्त है मतलब कि सब कुछ भगवान ही करा रहा है. वेरी लोग बोलते हैं सब कुछ भगवान ही करा रहा है ना, जो बुरा हो रहा है भगवान करा रहा है, अच्छा हो रहा है वही भगवान करा रहा है, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो क्या करूं. सो जब भगवान बोलते हैं निमित्त मात्र, मीन्स भगवान इज सेइंग दैट यू अंडरस्टैंड माई डिजायर एंड एक्ट अकॉर्डिंगली. नाउ Everybody is acting after sanction of God only. बिना भगवान की sanction के कोई कुछ भी नहीं कर सकता है. Somebody has to steal, the intelligence to steal has to come from Krishna. And the person, proprietor of that house wants to protect himself, how to protect that intelligence will also come from Krishna. You can understand how difficult is the work of Krishna. So both things, sanction has to come from him, the intelligence has to come from him. But if you are in this material world acting on a bodily platform, you are acting under the modes of material nature which is facilitating your desires. So you act according to your desires and Krishna as a neutral person sanctions that. He is like a judge, Upadrashta Anumanta. He has got nothing to do with what you desire. You desire and you do according to what you do, he will give you reward. Desiring and accordingly he will give his things. He is a neutral person, he is everything according to law, he is sanctioning them and you are suffering and enjoying the fruits of your action. Okay, but he has his own desire also, that is desire to preach, to help people come back home, back to Godhead. That is his desire and devotees participate in fulfilling that desire of Krishna. So this action of preaching, like Arjun was now working not from bodily platform, now he is working on behalf of Krishna. So that is the desire of Krishna. That is not, that's a different case than our case. So when we serve Krishna according to his instructions, then we are not working in karma, karma siddhant. That is outside karma. There is no reaction to that work. The action which is done according to the Krishna's desire has got no resultant action, reaction. Neither good nor bad. एक soldier commander के कहने पर enemy को मारता है, is he held responsible for that? No. वही सैनिक घर में आकर के अपने वही सरकार की गिरी हुई पिस्तौल से अपने पड़ोसी को मार देता है तो क्या होगा? जेल. Now he becomes responsible. He will say, उसी मैंने बंदूक से हजार लोगों को मारा, आपने मेरे को इनाम दिया, उसी बंदूक से मैंने एक आदमी को मार दिया, मेरे को फांसी की सजा दे रहे हो, क्या क्या मतलब है? Because first you did on the order of higher authority. And second, you did on your own desire, whimsically. Similarly, action which is done whimsically based on our desire, we get the result. If it is good, if it is according to Shastra, good result. If it is against the Shastra, bad result. But if you do action according to Krishna's desire, no good, bad. Transcendental, spiritual, no reaction. So no karma bandhan. No more that to enjoy this, you have to get another birth. No, no more birth. No reaction. That is called akarma. So I think we'll stop here now. But lot to be discussed, lot to be known. Therefore we'll meet.